एज अ स्टूडेंट मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। बट मुझे लगता था कि बचपन में पढ़ा किताबों में स्वामी विवेकानंद एक घंटे में पूरी किताब याद कर लेते थे। हमें ये चीज़ें ना बड़ी प्रेरित करती थी कि यार हमारे पास भी कुछ ऐसा दिमाग हो, हमारे पास भी कोई ऐसी टेक्निक हो। बट स्कूल्स के पास तो नहीं थी, हमारे टीचर्स ने तो ये सब नहीं सिखाया। मैंने अपनी बिटिया को सबसे पहले सिखाया व्हेन शी वाज ओनली 4.5, 4.5 साल की थी जिया। और जब मैंने उसे सिखाया और उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इंजीनियरिंग जो वो पढ़ के आए वो कहीं भी उनके काम नहीं आ रही है, वो उन्हें वहीं जाकर सीखना पड़ रहा है, स्किल सीखनी पड़ रही है, देन वो काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा पुअर है, जहाँ पे शायद काम किया जाना चाहिए, बिकॉज टैलेंट की कमी नहीं है हमारे देश में। पेरेंटिंग नहीं सिखाई जाती
जी।
मुझे लगता है पेरेंटिंग की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप भले इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप कुछ भी बनो, सीए बनो, पेरेंट तो बनेंगे ना। भले कोई कह दे मैं शादी नहीं करनी, तो पेरेंट तो फिर भी हो आप। अब चाचा तो है ना किसी के, मामा तो होंगे ना आप किसी
जी,
के
जी।
पेरेंट अकेला बायोलॉजिकल पेरेंट फादर और मदर ही नहीं होते हैं। तो घर में अगर कोई बड़ा है, चाचा है, बुआ है, मौसी है, तो वो भी तो पेरेंट के तरह है ना। वो स्कूलों की जरूरत या गुरुकुल क्यों आए? पहले जैसे मैंने बताया, पहले राजा का बेटा राजा ही बनता था
जी, जी।
तो राजा के बेटे को राजा बनना है तो वो अपने फादर से सीखेगा। वैद्य के बेटे को वैद्य ही बनना होता था और वो अपने फादर के पास जाता था सीखने के लिए। नाई या हजाम के बेटे को नाई या हजाम ही बनना है तो वो किससे सीखेगा? अपने फादर से सीखेगा। हर बच्चे को अपने फादर से स्किल सेट लेना है, जाना है, सीखना है, तो उसके लिए रोल मॉडल उसके फादर है
जी।
लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो डॉक्टर के बेटे को म्यूजिशियन बनना है, म्यूजिशियन के बेटे को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर के बेटे को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये सब मिक्सअप हो गया। तो पेरेंट्स तो हर रोल में नहीं आ सकता ना, हर तरीके से वो नहीं कर सकता। इसीलिए शायद स्कूलों की फॉर्मेशन हुई, बच्चे यही सीख रहे हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं बच्चे।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए पॉडकास्ट पे। आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जो आपके बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट पे कैसे काम करना चाहिए या उनकी क्रिएटिविटी को कैसे इन्हेंस करना चाहिए, उनके स्किल्स को कैसे और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बारे में आज हमसे डिटेल्स में बात करेंगे। हमारे साथ पेप माइंड के ओनर विनोद फुटेला सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू पूजा जी।
सर हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताएं।
मैं पेप माइंड का फाउंडर हूं और पेप माइंड बच्चों के ऊपर काम करते हैं। इसमें 6 to 14 एज तक के बच्चों को हम ट्रेन करते हैं, बिकॉज इस एज में बच्चों में पोटेंशियल बहुत होते हैं, बट डायरेक्शन की कमी होती है। इवन डायरेक्शन पेरेंट्स के पास भी नहीं होती। हम इन बच्चों को सिखाते हैं कि वो फोकस कैसे करें, कैसे वो कुछ भी लर्न करें। लाइक स्कूल हमें दो ही चीज़ें सिखाता है, जैसा कि हमने बचपन में सीखा, हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, नॉट हाउ टू लर्न। तो हम बच्चों को लर्न करना सिखाते हैं, कुछ भी कैसे याद करना है। इसके अलावा उन्हें इमोशनली डेवलप करते हैं, उनकी रीजनिंग को अच्छा करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। एंड ये सब इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं लाइफ में जो आप एक एज के बाद शायद नहीं सीख सकते या बहुत मुश्किल है। लाइक अगर मैं बात करूं, स्विमिंग है, स्विमिंग एक ऐसी स्किल है बचपन में सीखी जानी चाहिए। अगर आप बचपन में नहीं सीखे तो बड़े होके बहुत मुश्किल है सीखना। साइकिलिंग अगेन बड़े होके सीखना बहुत मुश्किल है अगर आपने बचपन में नहीं सीखी।
राइट।
और कोई भी लैंग्वेज है, आज अगर छोटे बच्चे को 5 से 6 साल के बच्चे को 20 ऐसे लोगों में छोड़ दिया जाए जो सब लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो 6 महीने में शायद वो बच्चा सारी लैंग्वेजेस पर मास्टरी हासिल कर लेगा, सीख जाएगा। लेकिन आज हमें कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, अगर मुझे फ्रेंच सीखनी है, जर्मन सीखनी है, तो इट्स अ वेरी टफ जॉब। सो कम एज में बच्चे कुछ भी सीख लेते हैं, उनका माइंड हर चीज एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए हम छोटे बच्चों पर काम करते हैं।
तो सर आपके माइंड में कैसे आई ये आइडिया, कैसे आया, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं थोड़ा, कैसे आपने स्टार्ट किया?
हाँ मैं एज अ स्टूडेंट मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। बट मुझे लगता था कि बचपन में पढ़ा किताबों में स्वामी विवेकानंद एक घंटे में पूरी किताब याद कर लेते थे। हमें एक हिंदी टीचर ने बताया था
जी।
शकुंतला देवी के बारे में सुना, तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को वो बहुत फास्ट कर लेती थी। एंड ये चीज़ें ना बड़ी प्रेरित करती थी कि यार हमारे पास भी कुछ ऐसा दिमाग हो, हमारे पास भी कोई ऐसी टेक्निक हो। बट स्कूल्स के पास तो नहीं थी, हमारे टीचर्स ने तो ये सब नहीं सिखाया, शायद वो नहीं जानते थे। तो कुछ रिसर्च की मैंने, हैरी लॉरेन एक ट्रेनर हैं बहुत बड़े मेमोरी के, उसके अलावा एडवर्ड डी बोनो लेटरल थिंकिंग पे काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी, शकुंतला देवी कैसे करती थी सीखा। और जब ये सीखा तो मैंने अपनी बिटिया को सबसे पहले सिखाया, व्हेन शी वॉज ओनली 4 एंड हाफ, 4.5 साल की थी जिया। और जब मैंने उसे सिखाया और उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो लगा कि ये जिया ही कर पा रही है। बिकॉज हर इंसान के अंदर, जैसे एज अ फादर तो मुझे हर पेरेंट्स को शायद लगता होगा कि मेरा बच्चा ही जीनियस है, तो बिकॉज मैं टीचर था, मेरे अंदर एक टीचर हावी था, तो मुझे ये लगता था कि शायद ये और बच्चे भी कर सकते हैं यही टेक्निक, तो अगर हम अपनाएं तो मैंने कुछ और बच्चों पे ये ट्राई किया, और जैसे और बच्चों पे ट्राई किया मुझे अगेन वैसे ही रिजल्ट्स मिले जो मैंने अपनी बिटिया में देखे थे। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद इन बच्चों में पोटेंशियल ज़्यादा है और ये स्किल्स हैं जो इन्हें नहीं सिखाई गई या नहीं सिखाई जाएंगी। तो इसीलिए मैं कॉलेज में था, आई लेफ्ट माई जॉब इन 2009 और मैं फुली इन छोटे बच्चों पे काम करने लगा, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही काम करती हैं, तो हम
ग्रेट।
दोनों ही ट्रेनिंग में हैं।
तो कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग गाइडेंस की कमी है।
गाइडेंस एंड स्किल्स, एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स पे काम नहीं किया जाता, हमें पढ़ाया जाता है बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा जहांगीर था, जहांगीर का बेटा शाहजहां था, ये जिंदगी में कभी काम नहीं आने। आप देखिए, इवन मैं मैथ्स पढ़ाता रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैथ्स की भी सारी टर्म्स लाइफ में कभी काम आ रहे हैं,
एग्री।
साइंस भी सारी काम नहीं आ रही है, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन क्यों पढ़ाए जा रहे हैं
बिल्कुल।
और इतना रटाया जा रहा है। मुझे याद है हम 9th 10th में थे, एक क्वेश्चन था एग्जाम में, मुझे आज भी याद है, महादेवी वर्मा ने 10वीं कब करी, पूजा जी आपको याद है आपने 10वीं कब करी, हमें भी अपनी 10वीं, हमें वो याद क्यों करना है, मुझे ये नहीं समझ आता था।
उसका हमारी लाइफ में क्या यूज है।
कोई भी उनका, हाँ बिल्कुल कुछ भी यूज नहीं है। तो हमें स्किल्स नहीं सिखाई जाती हैं, दैट्स वाई कि हम आज भी इतना देश में टैलेंट होने के बावजूद, इतनी पॉपुलेशन, अगर हम डिस्कस कर रहे थे अभी जैसे इतनी पॉपुलेशन है, तो ये पॉपुलेशन तो हमारी स्ट्रेंथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये
बिल्कुल
वीक पॉइंट है,
वीकनेस बन गई।
बिकॉज हम लीडर्स नहीं पैदा कर रहे हैं, हम अच्छे इंजीनियर बना रहे हैं, अच्छे डॉक्टर बना रहे हैं, और लीडर्स नहीं पैदा कर रहे हैं। आज आप देखो अमेरिका वर्ल्ड लीडर है, बिकॉज वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना रहे, वो मैनिपुलेट करना सिखाते हैं, वो लीडरशिप पे काम करते हैं,
राइट।
और इसीलिए वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। उसे पता है मुझे डॉक्टर इंजीनियर चाहिए होंगे तो मैं इंडिया से ले मंगा लूंगा,
मंगा
और इंडियन
लूंगा।
जितने भी अच्छे इंजीनियर डॉक्टर हैं वो अमेरिका ही
सब
जाके बैठे,
फॉरेन चल जा रहे
सब
हैं।
वहां जा रहे हैं।
एग्जैक्टली।
हम लीडरशिप पे काम ही नहीं कर रहे हैं।
इस बात पे तो मतलब किसी ने शायद, मैंने तो अभी तक सोचा भी नहीं कि वो लीडरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं और इंजीनियर डॉक्टर इंडिया से मंगा ले रहे
हाँ,
हैं।
तो यही हो रहा है, हम अच्छे इंजीनियर बनाने में लगे हुए हैं, अच्छे इंजीनियर भी बनेंगे, होने चाहिए, जरूरी है, बट लीडरशिप भी चाहिए।
सर, एजुकेशन की बात हो रही है अभी, तो आपके हिसाब से एजुकेशन है क्या? क्या एजुकेशन से बुक्स और स्कूल तक ही सीमित है, या इसके अलावा भी एजुकेशन पे बात किया जा सकता है?
नहीं बिल्कुल, हर चीज जरूरी है, लेकिन आज से अगर हम 300 400 साल पीछे जाएं तो होता क्या था, एक डॉक्टर या वैद्य होता था, जिसे हम वैद्य बोलते, तो वैद्य का बेटा क्या बनता था, वैद्य बनता था, राजा का बेटा राजा बनता था, कुम्हार होता था, कुम्हार का बेटा भी कुम्हार कुम्हार ही बनेगा।
जी
तो वो सब स्किल्स होती थी जो हम नेक्स्ट जनरेशन अपनी जूनियर को देते थे,
जी
लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन ने काम किया। आज अगर हम देखें तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर नहीं बनना है, बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन का बेटा म्यूजिशियन बनना चाहता है। तो अब एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। अब आप पेरेंट्स से नहीं एजुकेशन ले सकते, पेरेंट्स जो कर रहे हैं वही काफ़ी नहीं है, अब आपको एजुकेशन चाहिए। बट इस एजुकेशन के साथ साथ जो स्कूली शिक्षा जो है, या चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी जो पढ़ाया जा रहा है, वो इनफ नहीं है। जो सिलेबस आज, जो अगर मैं बात करूं, मैं टीचर्स के साथ काम करता हूं, टीचर्स बनने के लिए एक एक डिग्री है, एक क्वालिफिकेशन है, आपको मास्टर्स या ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एक बीएड करना जरूरी होता है। और बीएड क्या है कि उस टीचर को कैसे पढ़ाना है ये सिखाया जाता है। अब आप देखो पूरी दुनिया बदल रही है, हम स्मार्ट सिटीज लेकर आए, स्मार्ट मोबाइल आ गए हैं, स्मार्ट टीवी आ गए हैं, बच्चे हमारे इतने स्मार्ट हैं, इतने एडवांस हो गए, बट टीचर भी वहीं का वहीं पिछड़ा हुआ है। वही 25 साल पुराना सिलेबस जो JBT बीएड में पढ़ाया जाता था, आज
बिल्कुल।
भी एज इट इज ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चे तो बदल चुके हैं। आज से 25 साल पहले के जो स्टूडेंट्स थे या बच्चे थे और आज के बच्चों में जमीन आसमान का फर्क है।
जी
तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी इम्प्रूव नहीं कर रहा है अपने आप में, वो हर पॉलिसीज बन रही हैं, हर 4 साल बाद कोई ना कोई एक पॉलिसी बनेगी, फिर वो उसे विड्रॉ करेंगे, फिर नई पॉलिसी लाएंगे, थोपा जा रहा है। बट एक्चुअल में जो काम होना चाहिए, जो हमारे इन यूथ के लिए चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इवन आप MBA भी देख लीजिए, MBA देखें आप, इंजीनियरिंग करके जो बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि हम गुड़गांव में हम देखते हैं, वो जब प्रैक्टिकली जब वो लाइफ में जाते हैं किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, जब वो काम वहां कर रहे हैं जिस लैंग्वेज पे उन्हें काम करना है, अगर वो IT सेक्टर में है या मैकेनिकल किसी भी फील्ड में है, वो इंजीनियरिंग जो वो पढ़ के आए हैं वो कहीं भी उनके काम नहीं आ रही है, वो उन्हें वहीं जाकर सीखना पड़ रहा है, स्किल सीखनी पड़ रही है, देन वो काम कर रहे हैं। तो
बिल्कुल
एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा पुअर है, जहाँ पे शायद काम किया जाना चाहिए, बिकॉज टैलेंट की कमी नहीं है हमारे देश में, सिर्फ सिस्टम की कमी है। तो सिस्टम में भी अकेला हम सिर्फ ऐसे सरकारों को दोष दें, या अगर हम बात करें कि किसी कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ऐसी है, सिर्फ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो मुझे लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर सुधर जाए, थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, तो शायद हमारे बच्चे और आगे बढ़ सकें।
मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ, तो स्कूल के बच्चे मुझसे भी कहते थे कि दीदी इन चैप्टर्स का क्या यूज़ है हमारी लाइफ में।
हाँ, ये बच्चे सवाल करते हैं, बच्चे बहुत तेज हैं वो, और शायद पहले नहीं करते थे, आज तो बहुत करते हैं।
अगर मैं छोटे छोटे बच्चों की भी बात करूं सर, तो उनका बैग, स्कूल बैग, उनके वेट के बराबर मैं कह सकती
बराबर
हूँ
हो जाए,
झुक जाते हैं, वो इतना हैवी बैग होता है उनका।
हाँ, तो फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बहुत सारी और दुकानें भी चलानी है ना, तो वो बहुत सारी चीजें और भी देखनी है, हम उसके बारे में बात
टोटली
नहीं
एग्री
करेंगे।
सर, टोटली
तो बुक्स बुक्स के
एग्री।
बारे में, अगर उनके बैग के बारे में बात करें, तो बहुत सारी चीजें होंगी। एक्चुअली इंडिया में हम लोगों ने ना क्या हुआ है कि एक 7th 8th का बच्चा, अगर मैं बात करूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो उसे 3 लैंग्वेजेस पढ़नी होती हैं। एक उसे अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़नी है, दूसरा उसे हिंदी पढ़नी है, तीसरा उसे एक इंटरनेशनल इंग्लिश हम पढ़ते हैं जैसे। तो ये 3 लैंग्वेजेस हर बच्चा पढ़ रहा है, या मेट्रो सिटीज में अगर रीजनल लैंग्वेज नहीं है तो वहां पर फ्रेंच या जर्मन पढ़ाई जा रही है। तो हमारा बोझ जो है एक लैंग्वेज ना सीखने के लिए 3 लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है, इसकी वजह से भी पढ़ा है,
बिल्कुल
सीखनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज कभी खराब नहीं होती है, मैं कहता हूँ हर हमेशा सीखनी चाहिए कोई भी लैंग्वेज। आप दुनिया से कम्युनिकेट ही लैंग्वेज से ही करते हो, बट उनको बुक्स बना के, भारी भरकम बैग बना के ही क्यों? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप जमशेदपुर से, आपने
जी
बताया था आपने पंजाबी बचपन में नहीं पढ़ी होगी।
बिल्कुल
मैं
नहीं।
पंजाबी रीजन से आता हूँ। आपको भी पंजाबी सॉन्ग्स मूवीज देखने पसंद होंगे, आप गानों पे आप भी नाचते डांस
बिल्कुल
करते होंगे शादी में
जी
पार्टी में,
जी
तो वहां पर आपने पंजाबी किसी स्कूल में नहीं सीखी है, वो आपने म्यूजिक से सॉन्ग से सीख लिया। तो ऐसा ही जब हमारे को कुछ जरूरत है ना, तो हम सीख ही जाएंगे, तो उसके लिए बुक्स या सिलेबस बनाने की जरूरत नहीं है। हमने इंग्लिश बहुत बाद में सीखी, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो आज अगर मैं कि जिस बिजनेस में हूँ तो वहां मेरे लिए मस्ट है इंग्लिश, तो मैं सीख गया ना।
जी
तो इसी तरह अगर लैंग्वेजेस का बर्डन हट जाए फर्स्ट, और दूसरा हिस्ट्री में जो पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री की बजाय उन्हें फ्यूचर में जो स्किल्स चाहिए वो पढ़ाया जाना चाहिए।
बिल्कुल सर
और मैं बड़ी खराब बात लगती है, एक मैं बोलता हूँ कि हमें पढ़ाया जाता है हमारा देश आजाद किसने करवाया। मैंने 4 साल 5 साल हिस्ट्री, शायद 6th ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती, तो पढ़ी हमने 10th तक, देश आजाद किसने करवाया, कैसे, अरे देश गुलाम कैसे होता, पहले ये भी पढ़ा देते तो शायद पता लगता कि हमें किस चीज की जरूरत है कि दोबारा हमारा देश गुलाम ना हो जाए। और आज भी हम नोइंग, अगर माने या नहीं माने, गुलाम होते जा रहे हैं,
गुलामी की मानसिकता से ही जी रहे हैं।
बिल्कुल हम गुलाम होते जा रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे किस किसी भी तरीके से,
चाहे
तो
लैंग्वेज की बात करें।
बिल्कुल। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बोझ कम किया जा सकता है।
ओके सर, तो अब पेरेंट्स के पे आते हैं सर, तो आज के टाइम में पेरेंट्स ऐसा क्या करें जो उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो?
पेरेंट्स को करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी स्कूल आपके बच्चे के लिए कमिटमेंट नहीं करता है, कोई भी स्कूल जिम्मेदार नहीं है। आप 15 साल स्कूल में भेजते हैं एक बच्चे
जी
को, KG से लेकर 12th तक अगर हम बात करें, तो 14-15 साल जो बच्चा स्कूल जा रहा है, जो आप पूरा भारी भरकम फीस देते हैं, पूरे 15 साल अकेली फीस नहीं दी आपने, उस बच्चे का जो एक एनर्जी का जो पीरियड था, जब उसके पास हाई एनर्जी थी, वो आपने उसको वो
स्कूल
साल दे दिए उस बच्चे के।
जी
और जिस दिन वो 12th करके स्कूल से निकल जाएगा ना बच्चा, उसके बाद वो स्कूल से पहचानेगा भी नहीं। तो यहाँ सिर्फ पेरेंट्स का ही रोल मैं मानता हूँ रह जाता है, स्कूल कुछ भी जिम्मेदारी आपके बच्चे की नहीं लेगा। तो आप एज अ पेरेंट, आपको अपने बच्चों के अंदर जो स्किल्स चाहिए, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए जैसा होना चाहिए, तो मैं एक छोटा सा तीन रेफरेंस दूंगा। मैं तीन नाम हैं, आप कॉमन नाम है, आप लोग सब जानते होंगे। फर्स्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरे नरेंद्र मोदी एंड तीसरे राहुल गांधी। ये तीन नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ये बहुत फेमस हैं, इसलिए ले रहा हूँ कि आम लोगों को भी ये समझ आते हैं।
जी
तो पहले हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं। हर पेरेंट्स को ये बात ध्यान रखनी, ये तीन नाम मैंने बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये तीन नाम जो बोल रहे हैं, इनके पास क्या है ऐसा जो हमारे बच्चों के पास होना चाहिए? डॉक्टर मनमोहन सिंह जाने जाते हैं अपनी नॉलेज के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। उनके जितना शायद कोई और प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा नहीं है इंडिया में, आज तक
राइट
नहीं रहा,
नहीं
शायद
रहा
ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा कोई प्रेजिडेंट नहीं होगा जो इतना पढ़ा हो। तो फर्स्ट फेज में हमें अपने बच्चों को डॉक्टर मनमोहन सिंह की जैसी नॉलेज या एजुकेशन देनी है। नॉलेज सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। तो नॉलेज और एजुकेशन सिर्फ स्कूल से नहीं आएगी, वो आपको ये भी देखना होगा कि स्कूल के अलावा भी कहाँ से ले सकते हैं। दूसरे डॉक्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद मैं बात करता हूँ नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुकाबले 10% भी नॉलेज नहीं है। कोई उनकी इतनी ज़्यादा पढ़ाई ऐसी नहीं है, लेकिन उनके अंदर लीडरशिप है, उनके अंदर जो फ्यूचर विजन है वो बहुत स्ट्रांग है,
बहुत
प्रेजेंटेशन बहुत
स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग है। तो अकेला एजुकेशन काम नहीं करेगी, आपके पास लीडरशिप भी होनी चाहिए, आपके पास
एग्री
प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, कन्विंस करने की स्किल्स होनी चाहिए, अप्रोच करना, हैंडल कैसे करना है, ये स्किल्स होनी चाहिए। और यही वजह थी हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को नकार दिया था
बिल्कुल
और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार लेकर आए। तो
आप कैसे
ये
कम्युनिकेट कर रहे हैं
कैसे
चीजों
कम्युनिकेट
को।
कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं ना, तभी तो लोग वोट दे रहे हैं। कैसे अप्रोच किया जा रहा है, कैसे हैंडल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा होगा, मैं ये भी होता है। तो ये स्किल्स भी चाहिए आपको अगर आगे बढ़ना है। तो अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा ये स्किल्स जरूर सिखाइए। आपका बच्चा जिद ना करे आपसे, आपका बच्चा आपको कन्विंस करे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका बच्चा आपसे मोबाइल मांग रहा है और वो जिद कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, तो आपको खराब लगता है, आप मोबाइल हार के आप दे ही दोगे। लेकिन अगर आपका बच्चा आपको कन्विंस कर ले कि मुझे मोबाइल चाहिए और ये लॉजिक है, ये रीजन, और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आपको अंदर से खुशी होगी कि इसने मुझे कन्विंस किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल
डिफरेंस
है। तीसरा बात करते हैं हम राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी के पास ना तो शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी नॉलेज है, ना ही अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जैसी, बट उनके पास एक क्वालिटी है शायद, लोग भले ही लोग उनके बारे में कुछ भी मजाक बनाते हों, कुछ भी जोक्स बने हों, उनके पास उन्होंने देख बचपन में उन्होंने दादी को मरते हुए देखा, उनके फादर को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, सारी जिंदगी वो फियर में रहे, वो परिवार फियर में रहा, डर में रहा है। एंड जब वो पॉलिटिक्स में आए, अगर मैं 2014 से पहले बात करूं, तो उन्हीं के लोग पप्पू बोल रहे थे, पप्पू नाम से जोक्स बन रहे हैं, या आलू सोना जो भी उनके बारे में कहा, कितना क्रिटिसिज्म उन्होंने झेला है, और इतनी नेगेटिविटी,
बिल्कुल
और इतना क्रिटिसिज्म नेगेटिविटी, और इतने डर में रहने के बावजूद वो खड़े लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक स्किल है, ये भी बहुत बड़ी एक उनके पास पोटेंशियल है कि वो हर क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे हैं। भले नॉलेज नहीं हो, भले आप कुछ भी कहें, लेकिन वो हमारे बच्चों को भी, हमें इसको बोलते हैं हम एडवर्सिटी मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं हम आप टफ सिचुएशन से भी कैसे बाहर आए, और ये शायद बहुत जरूरी है। बिकॉज हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, भले कितनी अच्छी एजुकेशन दें, भले उनके लिए कितने भी रिसोर्सेज जनरेट कर लें, लेकिन क्या हम गारंटी कर सकते हैं हमारे बच्चों का जो लाइफ पार्टनर होगा वो क्रिटिक नहीं होगा?
बिल्कुल
क्या हम गारंटी कर सकते हैं हमारा बच्चा जब जॉब कर रहा होगा उसका
उसका
बॉस
बॉस
होगा वो नेगेटिव, या वहां पे नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा? ये सब चीजें मिलनी है उन्हें।
जी
तो हम अपने बच्चों को उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो तीन चीजें आपने बताई कि फर्स्ट आप अपने बच्चों को
एजुकेशन,
एजुकेट करो, सेकंड आप अपने बच्चे में लीडरशिप जो
बिल्कुल
प्रेजेंटेशन की चीज
जी
होती है उसे स्ट्रांग करो, एंड थर्ड होती है कि कोई भी कितना भी क्रिटिसाइज करे आप स्ट्रांगली डटे रहो अपनी चीजों पे।
जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा ना, अभी आप देखो पीछे एक कुछ साल पहले एक IAS ऑफिसर थे बक्सर में, वो नोएडा में आके उन्होंने रेल ट्रेन के नीचे कट के अपनी जान दे दी, उनका एक वीडियो, IAS ऑफिसर, एंड ये बात है 2017 की शायद। और उन्होंने एक लेटर लिखा है नोट, जिसमें सुसाइड लेटर था, जिसमें उन्होंने लिखा अपनी वाइफ और अपनी मदर के बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहे थे, उनके झगड़े से परेशान होकर वो सुसाइड कर लिया। आपको पता है एक आईएएस बनने के लिए जान पूरी जिंदगी लग जाती है, जनरेशन लग जाती है। हो सकता है एक एक पर्सन बनना चाहता हो, उनके फादर कभी बनना चाहते हो, नहीं बन पाए, अपने बेटे को बनाया, तो दो जनरेशन लग गई। और इतना ज्यादा वो उन्होंने पढ़ाई करी, इतने ज्यादा इंटरव्यूज दिए होंगे, इतना सब किया होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पाए फैमिली इशू को। ये स्किल्स हमारे पास नहीं है, ये हमें सीखना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए।
डिप्रेशन तो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन इश्यू हो गया है,
बहुत ज्यादा,
एंड लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को शुरू से स्ट्रांग बनाना चाहिए इस चीज के।
हमें स्ट्रांग भी बनाना चाहिए, और हमें एक बिजनेस की लैंग्वेज बोलते हैं प्लान बी, आप फेल होंगे जीवन में, ये सिखा दो उन्हें।
एग्जैक्टली सर,
इसीलिए स्पोर्ट्स या गेम्स होती हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। बचपन में आप बहुत बार जीतते हैं, बहुत बार हारते हैं, बहुत बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, तो ये गेम्स का रोल ये सबसे ज्यादा है कि वो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, आपको हार के बावजूद भी खड़ा रहना सिखा रही हैं। तो मुझे लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली हमेशा बच्चों को सक्सेस की बात करें, सक्सेस सिखाएं, हमें ये भी सिखाया जाना चाहिए कि हार होगी तो लेकिन आपको परेशान नहीं होना है जीवन में। ना परेशानियों की अगर बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ परेशानियां किसी एक या दो को, सबको ही रहती हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपके एक गिलास पानी में हम एक चम्मच नमक डाल दें
जी,
तो क्या वो पानी पी सकेंगे आप?
नो,
शायद नहीं पी पाएंगी, टेस्ट आपको नमक का आएगा, आप नहीं पी सकते। लेकिन वही एक चम्मच नमक एक बकेट पानी में डाल दिया जाए, तो यानी 10-15 लीटर पानी है, उसमें आपने एक चम्मच नमक डाल दिया, तो आप पानी पी सकते हैं, बट हल्का सा टेस्ट आएगा। अब वही एक चम्मच नमक अगर मैं एक झील में डाल दूं तो हम पानी पी भी सकते हैं और कोई टेस्ट भी नहीं आएगा,
कुछ डिफरेंसेस
तो
नहीं
बस है। इसी तरीके से हमें समझना है, ये जो एक चम्मच नमक जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। और ये सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना, हमारे खाते में भगवान या जो भी आप समझें, वो एक चम्मच नमक या वो एक प्रॉब्लम्स का चम्मच है, हमारे अकाउंट में आ जाता है, सबके अकाउंट में आ जाता है।
लाइफ एकदम स्मूथ किसी की भी नहीं होती,
किसी की भी नहीं है। बट आप अगर एक गिलास पानी हैं तो वो नमक आपको नुकसान करेगा, आपको तकलीफ देगा। अगर आप बकेट है, एक पानी बकेट है, तो हल्का करेगा, बट अगर आप झील हैं तो आपको एक चम्मच नमक से फर्क नहीं पड़ेगा,
पड़ेगा।
तो यही हमें सीखना चाहिए कि वो एक चम्मच नमक है ना, वो सबकी जीवन में मिलना ही मिलना है, वो प्रॉब्लम्स आनी आनी है, तो बट हम उसे फेस कर पाए, अपने आप को इतना बड़ा कर लें, इतना बड़ा कर लें, उन चैलेंजेस को फेस कर पाए।
बिल्कुल,
तो इसी से शायद हम लोग इमोशनली स्ट्रांग हो पाएंगे और टफ सिचुएशंस में भी खड़े रह पाएंगे।
बिल्कुल,
तो ये मान लेना चाहिए।
आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, एंड जैसे आपने कहा प्लान बी की बात करी, तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगी कि आजकल के पेरेंट्स जो हो गए वो बच्चों को ओवर बर्डन कर रहे हैं कि तुम्हें 99% लाने हैं, 95% लाने ही लाने हैं, वो अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। और अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है या किसी भी रीजन से अगर कम मार्क्स आ गए या फेल हो गया, तो बच्चों के साथ कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत गलत ट्रीट करते हैं, तो ऐसे में बच्चों पे क्या असर पड़ता है?
अभी ऐसा देखिए चेंज हो रहा है, अभी शायद उतना नहीं रहा जितना हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, बिकॉज अब बहुत अवेयरनेस आई है, चाहे वो सोशल मीडिया से आई हो, चाहे वो मूवीज से देख रहे हैं हम लोग, मूवीज से हमें पता लग रहा है, अब काफी अवेयरनेस आई है। यस, प्रेशर आज भी शायद छोटे शहरों में अगर मैं बात करूं, वहां प्रेशर है बच्चों पे, मेट्रो सिटीज में शायद पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, अवेयर ज्यादा हैं, यहाँ काउंसलर बहुत सारे हैं, तो शायद इतना प्रेशर हम बच्चों पे नहीं डालते, लेकिन छोटे टाउन या टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में ये प्रेशर है। तो ये प्रेशर शायद हम क्या करते हैं, जो मैं नहीं बन पाया, पेरेंट्स को लगता है मैं अपने बच्चे को बना के छोड़ूंगा, और खास तौर पर ये मदर्स में ये देखा गया है, हमेशा मम्मियों को लगी है कि मैं अपने बच्चे को ये भी करवा दूं, ये भी सिखा दूं।
पेरेंट्स के साथ कंपटीशन हो जाता है,
पेरेंट्स का पेरेंट्स के साथ कंपटीशन हो रहा है। और मैंने देखा कई खासतौर पे मदर्स को कि वो बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज पे करवा रही हैं, कुछ चेस सिखा रही हैं या कुछ अबेकस करवा रही हैं, और ट्यूशन क्लासेस सब चल रही हैं, एंड वो बच्चा अंदर क्लास कर रहा है, बाहर मदर्स खड़ी हैं और आपस में बात कर रही हैं, तो उस एक मदर को पता लगता है, अच्छा तुम्हारा बच्चा चार एक्टिविटीज में है, मेरा तो तीन में ही है, तूने ये तकलीफ हो रही है कि मेरा बच्चा एक शायद पीछे रह गया, तो वो गूगल करेंगी, कोई ना कोई और एक्टिविटी ढूंढेंगी, मेरे बच्चे को मैं इसमें और एंगेज कर दूं। हम बच्चे की स्ट्रेंथ जाने बिना, उसकी नीड जाने बिना, उसका पोटेंशियल जाने बिना, उसको आंखें बंद करके ऐसे ही डाल रहे हैं, तो ये खराब है। और मार्क्स जो है, परसेंटेज है, ये मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एक बच्चे में पोटेंशियल है तो उसे मार्क्स नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए भाई। अगर आप 100 डिजर्व करते हो तो आप 100 की मेहनत करो, कहीं कोई ये नहीं बोलेगा खराब है। कोई दुनिया में भले कुछ भी कह ले हम कि मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है, वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है हमारे को। वो 60 अगर मैं बात करूं, 60% वाले थे हम लोग, तब 60% आना, फर्स्ट डिवीजन आना भी बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अगर आप 100 ले सकते हैं तो आपको लेने चाहिए। हाँ, लेकिन वो प्रेशर के साथ आप ले रहे हैं, अगर आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपके मार्क्स कहीं भी काम नहीं करेंगे
जी। तो एक पेरेंट को बच्चों को बिना ओवर बर्डन किए हुए कैसे सक्सेस मनाया जा सकता है?
बिल्कुल जी, आप उन्हें सिखाइए कैसे वो लर्न करें, कैसे वो पढ़ें, ताकि उनका जो होमवर्क करना है 2-2.5 घंटे जो एक मदर बच्चों के साथ लगा रही है, ऐसा नहीं कि माँ खुद परेशान नहीं हो रही, मम्मियां भी बहुत परेशान, बच्चों से ज्यादा वो परेशान होते हैं
जी।
मैं देखता हूँ कि वो 2-2 घंटे बच्चे के पीछे भी लगी हुई है कि होमवर्क करवाना है, मुझे पढ़ाना है, या वो ट्यूशन लेके जा रही है। तो देखिए, अगर उन्हें स्किल सिखा दी जाए, अगर उनको मीनिंग दे दिया जाए क्यों पढ़ना है उन्हें, और स्किल दे दी जाए कि वो जल्दी पढ़ लें और जल्दी याद हो जाए उन्हें चीजें, या होमवर्क जल्दी निपटा लें, तो वो अपना टाइम को स्ट्रेच आगे कर सकते हैं खेलने में या किसी और एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। बिकॉज एक्चुअली पढ़ाई कभी भी इंटरेस्टिंग रही नहीं है, मुझे नहीं लगता। अगर किसी भी दुनिया में किसी भी बच्चे से पूछा जाए, बेटा तुम्हें पढ़ना पसंद है, अभी तुम पढ़ना चाहोगे या मेरे साथ मूवी देखना, तो हर बच्चे का जवाब यही होगा, मैं मूवी देखना पसंद करूंगा। रेयर ही कोई बच्चे होते हैं वो जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, मूवीज नहीं देखना चाहते, या वो खेलना नहीं चाहते, तो यहाँ ब्रिलियंट नहीं है वो, यहाँ कोई प्रॉब्लम है उनके अंदर। अगर बच्चा खेलना पसंद नहीं कर रहा है, मूवीज देखना पसंद नहीं कर रहा है, और वो पढ़ना पसंद कर रहा है, तो ये अगेन सीरियस इशू है,
नॉर्मल नहीं है,
नॉर्मल नहीं है ये। तो वहां पर उन्हें स्किल्स दीजिए, उन्हें उनको वो लाइफ है उनको एंजॉय करने दीजिए, उनको खेलने का टाइम भी चाहिए। मेंटल ग्रोथ तभी होगी जब वो बच्चा खुश होगा, और वो लर्न किसी भी चीज को तब कर पाएगा। लर्निंग के लिए सिंपल से 2 चीजें चाहिए, क्लासरूम में भी टीचर्स के लिए भी मैं ये सिखाता हूँ। अगर आप हैप्पी हैं और आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तभी आप सीख सकते हैं। अगर आप खुश नहीं है आप नहीं सीखोगे। अगर आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे तो क्लासरूम में सीखने के लिए दोनों चीजें चाहिए थी, और प्रॉब्लम ये हुई ये दोनों चीजें क्लासरूम में मिसिंग है। बिकॉज बच्चा खुश कहाँ है? प्लेग्राउंड में। कॉन्फिडेंस कहाँ फील कर रहा है? दोस्तों के बीच, मूवी देखते वक्त, वीडियो गेम खेलते वक्त।
आपका बॉडी और ब्रेन दोनों एक जगह रहना चाहिए,
दोनों एक जगह रहना चाहिए। तो अब दोनों को आप कैसे लेकर आए कि वो उस पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग कर दें कि उसको उसमें खुशी मिले और वो सीखे जल्दी, तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो ये दोनों चीजें लानी बहुत जरूरी है, तभी वो लर्न कर पाएगा, नहीं तो वो एब्सेंट ऑफ माइंड है। अगर वो बैठा भी आपके सामने तो बुक्स खुली भी हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहे। फिजिक्स में एक साइंस में टर्म है, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क। अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो वर्क नहीं माना, शून्य माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। इसी तरह अगर मेरे सामने बुक्स खुली है और मैं उसे लेके बैठा हूँ घंटों तक और मैं कुछ उसे परसीव नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे मैं 2 घंटे बैठा हूँ चाहे 6 घंटे बैठा हूँ, इसे फर्क नहीं पड़ रहा, वर्क इज जीरो।
Exactly.
तो उस जीरो वर्क में आपने जो टाइम तो खो दिया ना, तो उस टाइम को आपको बचाना था, सेव करना था या यूटिलाइज करना था, जिससे हम आउटपुट ज्यादा ले पाते जो मिसिंग है।
तो सर, आपके एक्सपीरियंस से डेली ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे बच्चों का ब्रेन शार्प हो?
ये बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटीज़ हैं, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। स्वामी विवेकानंद करते थे, शकुंतला देवी के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट वो लिटिल बिट वो भी उन जितना, क्योंकि मूवी देखी मैंने उनके बारे में थोड़ा पढ़ा था। तो आप 2-3 चीज़ें कीजिएगा। आपके घर में मंदिर है
जी?
हम सबके घर में मंदिर होते
जी।
हम दिया जलाते हैं उसमें
जी।
क्यों जलाते हैं दिया?
पॉजिटिव वाइब्स के लिए।
पॉजिटिव वाइब्स, यहाँ ना मैं थोड़ा साइंटिफिक बताता हूँ
जी।
हमें उस दिए को, एक्चुअली दिया जो है वो सिंबल था हमारे इंटरनल की, हमारे अंदर लाइट है जिसे हमें देखना था
जी।
और जो वो घंटी है वो भी अगेन सिंबल था कि वो हमारे अंदर बजनी चाहिए धुन। बट हमने क्या किया, हमने मंदिर में दिया जलाया और फॉर्मेलिटी की और भगवान खुश हो जाए, पॉजिटिव है। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान खुश नहीं होगा, उसे दिए की जरूरत नहीं थी। दिया हम इसलिए जलाते थे वहां पुराने टाइम में कि उसमें लोग मेडिटेशन करते थे, जिसको हम बोलते हैं तराटक, कॉन्सेंट्रेट करते थे। तो आपको क्या करना है, जब आप दिया जलाएं, अगर आप मंदिर नहीं है तो आप कैंडल भी ले सकते हैं, तो उस कैंडल लाइट को या उस दिए की लाइट को आपको 10-15 या 20 मिनट तक देखना है मंदिर में बैठ के। तो शांति तब आएगी घर में, पूरा परिवार अगर वो बैठ के, अगर ये क्योंकि बच्चों को सिखाना है आपको, तो आपको भी ये करना, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कोई भी इंसान, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, वो जॉब कर रहा हो या किसी भी फील्ड में है, तो जब वो त्राटक करता है, इसे त्राटक बोलते हैं, और ये कुछ दिन में, 20-25 दिन के अंदर अंदर, 21 दिन बताया जाता है, 21 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। आपका फोकस बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, थॉट्स जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आने आपके कंट्रोल में आ जाएंगे।
और लाइक अ मेडिटेशन,
इट्स ये मेडिटेशन की सबसे ऊपरली चीज मैं बता रहा हूँ और ये साइंटिफिक प्रूवन है। तो आपका जो फोकस बढ़ेगा तो आप अपने जो भी आप एक्टिविटी काम कर रहे हैं उसमें आप कम टाइम में ज्यादा अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। त्राटक हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, हर पेरेंट्स को खुद सीखना चाहिए और ये बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आप घर में 20-15 मिनट निकाल सकते हैं। सेकेंड, आप कुछ न्यूरोबिक्स की एक्सरसाइजेस करें, लाइक कुछ बच्चे करते हैं बचपन में लेकिन पेरेंट्स नोटिस नहीं करते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं
जी।
और पेरेंट्स वो पेंसिल पकड़ते हैं और बोलते हैं राइट से लिखो। ऐसा नहीं देखना, ऐसा नहीं करना है हमें। वो अच्छा है अगर वो लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो मे बी उसके अंदर उसका राइट ब्रेन एक्टिव हो, बट आप दोनों हाथों का यूज करना सिखाइए उन्हें। तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। लाइक मैं अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर्स को रोटेट कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ राउंड, इसी तरह रिवर्स करेंगे। नेक्स्ट फिंगर फिर हम कर सकते हैं, ये सारी फिंगर्स को इस तरीके से करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे ये आप देख रहे हैं, एक तरफ 5 एक तरफ 1, नाउ चेन चेन चेन, इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक और आप देखेंगे, फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं और ये मिडल 2 फिंगर्स हैं, नाउ चेन चेन चेन,
बहुत क्विकली चेंज हो रहा है।
एंड और एक है कि मैं एक हाथ को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, आप देख रही हैं, और दूसरे हाथ को एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज कॉल्ड न्यूरोबिक्स,
जबकि हम लोग कहते हैं कि दोनों हैंड रिवर्स ऑर्डर में नहीं चल सकते हैं।
नहीं चल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, हो जाता है। मैंने भी सीखा, बहुत बाद में सीखा।
ओके
जी,
कितना टाइम लगा सर आपको सीखने में?
बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैं क्योंकि ये एक ही दिन में सारे एक्सरसाइज मेरे पास नहीं थी, मेरे पास एक एक करके आई थी, तो मैं एक एक करके प्रैक्टिस कर रहा था। जब आप कुछ एक्सरसाइज कर लेते हो तो फिर तो आपने अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर लिया
जी,
राइट, तो फिर वो सब चीजें करने लगेगा। यही वजह है, ये एक्चुअली फीमेल कर पाती हैं ये, वही वो एक्सरसाइज उन्होंने नहीं की हो। ये एक रिसर्च हुई थी बहुत साल पहले कि एक डॉक्टर, एक शायद इंजीनियर थे, एक म्यूजिशियन थे, एक साइंटिस्ट थे, इन 4-5 लोगों का IQ टेस्ट किया गया था। और आपको जानकर ताजुब होगा, जो सबसे कम पढ़ा लिखा था इसमें म्यूजिशियन था, उसका IQ सबसे ज्यादा पाया गया। बिकॉज आप डॉक्टर को देखे, वो एक ही हाथ से एक ही तरीके का काम सारी जिंदगी करते हैं,
एक
ही पैटर्न के हाथ पूरी जिंदगी वो एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। और म्यूजिशियन है, हर रोज नई चीज क्रिएट करता है, और वो दोनों हाथों का तबला बजा रहा है, वो दोनों हाथों से बजा रहा है, हारमोनियम या पियानो बजा रहे हैं तब भी आप दोनों हाथों का यूज कर रहे हैं। तो वो म्यूजिशियन जो है वो दोनों हाथों का यूज करते हैं। जब वो दोनों हाथों का हम यूज करते हैं तो हमारे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर दोनों ब्रेन एक्टिवेट रहते हैं। लेकिन आप देखो, फीमेल बहुत अच्छी मैनेजमेंट में बहुत अच्छी होती है। उसका रीजन क्या है कि पुराने टाइम में शुरू से ही ना छोटी लड़कियों को कुछ ना कुछ सिखाया जाता था, छोटे छोटे घर की चीजें
जी जी,
तो वो दोनों हाथों का यूज करती थी। लड़कों में ऐसा नहीं होता था,
लाइक स्वेटर बुनना,
सब्जी काटना, आप मशीन पे कपड़े सिलते हैं जब तब भी वो इस तरह के। यही वजह है कि आज आप अगर आप घर में मशीन लेके बैठी है कोई लेडी, आप देखें कभी अपने पेरेंट्स को या किसी छोटे गांव में जाके देखो, तो मशीन पे कपड़े सिल रही और उसका ध्यान भी टीवी में, टीवी भी देख रही है वो,
जी जी,
और इधर वो इधर कपड़े भी सिल रही है, और तीसरा प्रेशर कुकर में सीटी कितनी बज चुकी हैं वो भी ध्यान है उसे। तो वो 3 या 4 काम इकट्ठे इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज उन्हें वो बचपन से ही सिखाए जाते हैं
जी,
तो वो दोनों हाथों का यूज बराबर करती हैं।
तो मेनली आप कह सकते हैं कि फीमेल्स का IQ लेवल मेल से ज्यादा होता है।
मैं एग्जैक्ट IQ के बारे में नहीं कहूंगा, बट वो मल्टी टास्क इसलिए कर पाती है। IQ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और भी चीजें होंगी, हो सकता है, लेकिन मल्टी टास्क एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजों पे सोचना, ये फीमेल को भगवान ने शायद दिया है, कुछ दिया भी है, और उनकी जो डेली रूटीन की प्रैक्टिसेस हैं
जी जी,
तो उससे भी उनके अंदर आया।
ओके, तो सर एक पेरेंट को, अगर पेरेंट एंड टीचर के कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो एक पेरेंट को टीचर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए?
देखिए दोनों का रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चा अगर साइकिल पे बैठा है तो साइकिल के 2 व्हील है, एक आगे का एक पीछे का
जी,
तो आगे वाला व्हील पेरेंट्स है और पीछे वाला व्हील जो है टीचर्स हैं।
बिल्कुल,
या दोनों को उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, तो दोनों में से एक भी गड़बड़ाएगा तो बच्चा गिरेगा नीचे
जी।
तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अकेला आप सोचें कि एज अ पेरेंट हम डिपेंड हैं टीचर्स पे, क्योंकि टीचर्स ने हमें एक स्किल सेट है, जो पढ़ाई है या जो भी है वो देना है, बिकॉज हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता
जी।
तो वो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए हमेशा। मेरा मानना है टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करते आए, हमारे जनरेशन टू जनरेशन अगर हम देखें तो वो वैल्यू सिस्टम आज भी है।
जी
तो इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। और हमेशा आप पीटीएम पे जाएं, आप यही ना पूछें कि उसके मार्क्स कितने हैं, आप टीचर से पूछें वो बिहेव कैसे कर रहे हैं,
राइट
खराब तो नहीं कुछ वो कर रहा, आप आपके साथ मिसबिहेव नहीं कर रहा है, आप ये चीज़ें भी जरूरी हैं, वैल्यू सिस्टम बहुत जरूरी है। देन टीचर भी इंटरेस्ट लेते हैं कि यस यार ये संस्कारी लोग हैं इनसे,
जी
तो वो हमेशा देगा टीचर भी। एंड अभी अभी सिर्फ हमारे टाइम में अलग था जब एक बहुत सारी अलाइनमेंट इस तरीके से थी क्योंकि पेरेंट्स कंप्लीटली डिपेंड थे स्कूल टीचर पे।
जी
आज पेरेंट्स भी अवेयर हैं, पेरेंट्स के पास भी रिसोर्सेज हैं एंड दे आर एजुकेटेड ऑल्सो, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
जी
माइंडसेट आपका दोनों का बिल्कुल ऐसे चलना चाहिए, मुझे अपने बच्चे के लिए चाहिए क्या, और जो मेरे को अपने बच्चे के लिए चाहिए, जो मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ है, जो अगर वीक पॉइंट भी है तो उसके लिए स्कूल कैसा हो या टीचर्स कैसे हो,
जी
तो तभी वो आगे बच्चा पढ़
जैसे
पाएगा।
बच्चे में कोई स्किल वीक है तो उस पे दोनों डिस्कस करके कोऑर्डिनेट करके उस
100%
पे
विदाउट डिस्कशन हो ही नहीं सकता है,
जी
बिकॉज एक के पास टाइम रिसोर्सेज है पेरेंट्स, एक के पास स्किल्स हैं टीचर्स, तो दोनों डिस्कस करेंगे तभी वो बच्चे के ऊपर
बिल्कुल
वो
सर।
फायदा होगा उसे।
सर अगर आज के भी एजुकेशन की बात करें तो जहाँ तक मैं देखती हूँ कि अभी भी थ्योरेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और प्रैक्टिकल चीज़ों पे कम, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
ये हमेशा से ही रहा है, हम थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जाती है हमें थ्योरी, बिकॉज हमारे पास जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो एक एक पेपर दिया जाएगा जिस पे आपको लिखना है,
जी
और वो लिखने के बेस पे ही आप तय होगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या आप कैसे आईक्यू क्या है, आप कैसे रहे। तो अगर आपका क्वेश्चन पेपर ही आपका जो एग्जाम ही आपको उस आंसर शीट पे रिटर्न में ही देना है तो फिर पूरा साल वो थ्योरी तो चलेगी ना।
जी
प्रैक्टिकल अगर एग्जाम प्रैक्टिकल भी होना है, लाइक मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था तो मेरा एक टेस्ट होना था, मुझे ड्राइव करके दिखाना है गाड़ी को,
जी
तो मैं घर जाके कभी ड्राइविंग की किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं ड्राइविंग करूंगा सीखूंगा
जी
मैं,
जी
समझ रहे हैं आप। तो अगर एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज कर दिया जाए ना तो वो क्लासरूम स्टडीज अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। अगर अगर आप अगर आपके पास कोई आईटी के लिए जॉब लेने आता है और आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप एचआर में हैं, आप उसका इंटरव्यू ले रही, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को शायद साइड में रखेंगी और उसको सामने लैपटॉप करेंगी, हाँ तुम करके दिखाओ जो बोल रहे हो कर
जी
सकते हो
ऐसा
क्या।
होता है सर।
अब वो बिकॉज अब आपने उसका जो है थ्योरी में एग्जाम नहीं लिया, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम ले रही है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम में वही क्लियर हो पाएगा, वही से पास कर पाएगा जिसने वो सब सीखा हुआ है, प्रैक्टिकली किया हुआ है, ना कि थ्योरी पढ़ी हुई है।
जी
तो हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न में प्रॉब्लम है, वो एग्जामिनेशन पैटर्न अगर ठीक हो जाएगा तो हमारी क्लासरूम स्टडीज अपने आप चेंज होंगे।
और सर अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके में मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझसे डिस्कस कर रही थी कि वहां पे बच्चों को स्कूल बैग लेकर नहीं जाना होता है।
देखिए वहाँ बहुत सारी चीजें अलग हैं, यूके का पॉपुलेशन इतनी नहीं है, वहाँ कंपटीशन इतना नहीं है, हमारे यहाँ बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल आईएएस आईपीएस ये यूपीएससी के जो एग्जाम है इसके लिए इतना पढ़ते होंगे ये लोग, आप कभी दिल्ली में जाके देखें दिन रात वो पढ़ रहे हैं।
जी
तो बैग आप फिर अगेन वही वही है कि आपको एग्जाम अगर यूपीएससी का क्लियर करना है तो ये आपके पास चॉइस नहीं है पढ़ने के अलावा, आप आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज से कम शायद ज्यादा आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए,
जी
होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए आपको, और भी चीजें पता होनी चाहिए, इंटरव्यू भी होगा, आपका माइंडसेट भी देखा जाएगा, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी, आप इमोशनली तो वीक नहीं है, बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन वो एग्जाम इसी तरीके बिल्कुल, वहाँ कंपटीशन कम है, वहाँ जरूरत नहीं है उनको, या क्या वजह है, वहाँ उन्हें तीन लैंग्वेज नहीं सीखनी है, एक वो अपनी लैंग्वेज सीखते हैं, शायद एक बाहर की लैंग्वेज सीखते
जी
होंगे, तो उनका बर्डन अपने आप ही कम हो गया,
बिल्कुल
और दूसरा वहाँ सब्जेक्ट्स की बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं। अब हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम आ रहा है कि आप सब्जेक्ट जो है अपनी चॉइस के ले सकते हैं, पहले ऐसा होता था कि अगर आपको साइंस में जाना है तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही लेने होंगे, तो अब थोड़ी चॉइस आ गई है, अब आप
ओके
देख रहे हैं, तो ये भी वजह है। तो हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो अच्छी एजुकेशन देनी होगी,
बिल्कुल
और अच्छी एजुकेशन का मतलब यहाँ बुक्स हो ही गया है, या तो हम एग्जामिनेशन पैटर्न को या जज करने के तरीके को बदल लें, अगर वो नहीं बदलेंगे तो
बुक्स
आपके पास
का
बुक्स के
लोप
अलावा आपके
रहेगा
पास
ही,
चॉइस क्या है।
चॉइस नहीं है।
जी
राइट। एंड सर अगर बच्चों की बात करें तो क्या हर बच्चा जीनियस हो सकता है?
हर बच्चा जीनियस हो सकता नहीं है, हर बच्चा जीनियस है भाई।
ओके
देखिए अगर हम बात करें, अब एप्पल में से बीज आपको निकालना है तो आप उसे कट करोगे, बीज निकाल लोगे, इट्स अ सिंपल प्रोसेस। बट अगर आपको बीज में से एप्पल निकालने हैं तो एक लॉन्ग, एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबी प्रैक्टिस है,
राइट
तो वो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा।
जी
इसी तरह जीनियस तो है, हर बच्चा जीनियस है, बट उसको निकालना कैसे है, उसका बेस्ट वर्जन निकालना कैसे है,
राइट
तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। हर बच्चा जीनियस है, पैदा हर बच्चा जीनियस होते हैं, बट वो वहाँ के एनवायरनमेंट, आपकी परवरिश, आपके वैल्यूज, आपके रिसोर्सेज, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाएगा।
जी। तो आज के टाइम में एआई का जमाना आ गया, तो स्मार्ट और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करना कितना जरूरी हो गया है?
आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको एडोप्ट करना पड़ेगा। हमारी जनरेशन अलग थी, आज की जनरेशन बहुत अलग है।
जी
एआई तो भगवान है। अब एआई के बाद क्या आएगा, अभी मैं टेक्नोलॉजी का इंसान पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एआई जो आज अगर है तो ये तो भगवान, आप बच नहीं सकते।
जी
हम उस जनरेशन से हैं जब हमने 5 साल की एफडी देखी। एफडी मींस 5 साल में पैसा दुगना होता था, वो टाइप
जी
देखा हमने,
जी जी
7 साल देखा। हमने 10 साल की एफडी देखी, 10 साल में डबल। हम उस जनरेशन से, हमारे अंदर इतने पेशेंस थे, हम 10 साल इंतजार करते थे एफडी को मैच्योर होने का, पैसा डबल होने का। लेकिन आज की जनरेशन के पास इतने पेशेंस नहीं है, उन्हें तो दूसरे दिन डबल चाहिए, तो पेशेंस नहीं है। तो अब एआई के अलावा चॉइस कहाँ है? तो अभी जो जनरेशन आ रही है ना, वो एआई से इतनी स्मार्ट। हाँ, नुकसान भी हैं इसके, तो एआई तो आप बच नहीं सकते, इसको आपको अपनी लाइफ में यूज़ करना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब काउंसलर नहीं रहे, अब अभी पेरेंट्स ज्वाइंट फैमिलीज नहीं है हमारे पास, बुजुर्ग नहीं है घरों में,
जी
और आपके पास एआई अगर है तो आपको एआई अच्छे जवाब देता है, आपको काउंसिल कर सकता है,
जी
बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, खराब भी हैं। अभी
यूज
कैसे,
करने पर डिपेंड करता है आप
अगेन
कैसे
अगेन
यूज
अगेन आप गाड़ी चला रहे हैं और आप गाड़ी तेज चला रहे हैं तो ये जो कि क्राइम है, बट अगर मैं बोलूं मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ किसी को बचाने के लिए, मेरे पास कोई पेशेंट है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं गाड़ी तेज इसलिए चला रहा हूँ ताकि उसे
सेव कर सकूं।
हॉस्पिटल पहुंचा के बचा सकूं, तो यहाँ गाड़ी तेज चलाना क्राइम नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं गाड़ी तेज चला के किसी की जान ले रहा हूँ तो ये क्राइम है।
क्राइम है।
अब डिपेंड करता है आप गाड़ी तेज क्यों चला रहे हैं। इसी तरीके से अब डिपेंड आप किसी भी चीज को यूज कैसे कर रहे हैं। एआई को आप यूज अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव उसके लिए कर रहे हैं,
जी
अगेन वो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा।
बिल्कुल सर। सर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं, डिफरेंट लोगों से आप मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि पेरेंट्स आज के टाइम ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो बच्चों की ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहे हैं?
अभी बहुत अवेयर हैं पेरेंट्स, गलतियां देखिए, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना तो पेरेंट्स के पास कम गलतियां रहती हैं, लेकिन बचपन में जब वो बच्चा छोटा है, जब बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता, तब हम कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो शायद उसके लिए ख़राब होती हैं। लाइक बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चा ज़िद करता है, बहुत ज़िद करता है,
जी
रो के अपनी बात मनवाता है। तो देखिए होता क्या है, बचपन में पहली बार बच्चा जब रोया, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को गोदी में बिठाता है, प्यार करता है अपने अपने तरीके से, आप काल खींचोगे, सर पे हाथ फेरोगे, तो पहली बार बच्चा रोया तो आप क्या करेंगे, उसे गोदी में बिठाओगे, प्यार करोगे, उसे चुप करवाओगे। दूसरी बार फिर रोया कुछ दिन बाद, फिर आपने उसे प्यार किया, गोदी में लिया, प्यार किया, चुप करवाया। तीसरी बार रोया, फिर आपने उसे वही सेम पैटर्न, गोदी में लिया, प्यार किया। चौथी बार, पांचवीं बार, ये 10 बार ये हो चुके हैं। अब 10वीं बार तक आपके बच्चे के ब्रेन के अंदर एक ना पैटर्न डेवलप हो गया है कि मुझे मम्मा से अगर प्यार चाहिए, गोदी में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा।
ओके
क्योंकि आपने रोते हुए बच्चे को गोदी में उठाया हर बार। अब उसे ये पता है कि मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा से प्यार चाहिए, पेरेंट से प्यार चाहिए, मुझे रोना पड़ेगा। अब रोने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, आपसे डांट खाएगा, चांटा खाएगा। तो आप कब डांटोगे, डांट खाने के लिए उसे क्या करना है, आपका कोई कप गिरा देना है, आपका मोबाइल फेंक, या कुछ ऐसा काम करना है जो आप पसंद नहीं करते। अब बच्चा ये पैटर्न सीख गया, उसने कोई पंगा किया, आपने उसे डांटा, वो रोएगा, कुछ देर बाद आपका मन पसीज जाएगा, आप उसे गोदी में लेंगे, प्यार करेंगे, चुप करवाएंगे, साथ में एक चॉकलेट फ्री देंगे। नाउ ही नो हाउ टू गेट अ चॉकलेट।
ओके
तो ये पूरा ब्लैकमेलिंग का पूरा वो पैटर्न 2.5 साल की उम्र में सीख चुका है पेरेंट्स से, एंड पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं बहुत, तो फिर भी वो विक्टम बन जाते हैं। वो 5-2.5 साल का बच्चा भी सीख गया है कि मुझे अपने पेरेंट्स को उंगलियों पे कैसे नचाना है। तो ये हम लोग सिखाते हैं एक्चुअली, हम लोग ऐसे अनअवेयर हैं बिकॉज हमारे यहाँ पेरेंटिंग नहीं सिखाई जाती।
जी
मुझे लगता है पेरेंटिंग की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए ग्रेजुएशन में
जी
हर बच्चे को, बिकॉज आप भले इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप कुछ भी बनो, सीए
आप
बनो, आप
पेरेंट्स
बिजनेस
तो
करो,
बनोगे.
पेरेंट तो बनेंगे ना। भले कोई कह दे मुझे शादी नहीं करनी है, तो पेरेंट तो फिर भी हो आप चाचा तो है ना किसी के, मामा तो होंगे ना आप किसी के।
जी.
पेरेंट अकेला बायोलॉजिकल पेरेंट फादर और मदर ही नहीं होते हैं, तो घर में अगर कोई बड़ा है, चाचा है, बुआ है,
जी
मौसी है, तो वो भी तो पेरेंट के तरह है ना वो।
जी
तो ये शायद सबको सीखनी चाहिए, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, साइकोलॉजिकल हैं, तो ये हमें समझना चाहिए। और यही वजह आज बच्चे ने चॉकलेट पाने के लिए आपसे जिद की,
पूरा
वो एटम
पैटर्न उसने सेट कर
जैसे ही
लिया.
वो थोड़ा बड़ा होगा उसे फिर वो साइकिल चाहिए, थोड़ा और बड़ा होगा उसे बाइक चाहिए, फिर उसे गाड़ी भी चाहिए, फिर उसे वो लड़की चाहिए जिसे वो शादी करना चाहता है। उसको हर बार वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा और आप हर बार सरेंडर कर देते हैं।
जी.
तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें शायद सीख लेनी चाहिए,
और वो गलत
कभी भी
पैटर्न सेट होते जाता है.
गलत पैटर्न सेट होते जाते हैं। और यहाँ बच्चे का दोष नहीं है बिकॉज वो तो 2.5 साल में हमने सिखाया उसे, उसकी कोई गलती नहीं है उसमें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, शायद हम सीख जाएं, अच्छी परवरिश दे सकते हैं।
सर, बात पेरेंटिंग की हो रही है और पेरेंटिंग बहुत ही अहम रोल निभाता है, तो पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बच्चे उनकी बात सुने, उनके लिए वो रोल मॉडल बन जाए?
हाँ, तो पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना है तो पेरेंट्स को वो ऐसा हीरो होना चाहिए, पेरेंट्स की भी वो वैल्यूज होनी चाहिए, पेरेंट्स भी
जी.
डिसिप्लिन होना चाहिए। पेरेंट्स अगर अगर मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा तुम्हें सुबह 4 बजे उठना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, मैं रोज उसे एक लेक्चर देता हूँ कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए और मैं खुद 8 बजे उठता हूँ, तो
एग्री,
कभी रिजल्ट नहीं आएंगे भाई,
बिल्कुल.
कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। वो बच्चा देख रहा है कि खुद 8 बजे उठते हैं, मुझे रोज भाषण देते हैं। आप खुद वो काम वो प्रैक्टिस में करेंगे तभी तो वो बच्चों में, अगर आपको अब चाहिए कि मेरा बच्चा अच्छी बुक्स पढ़े तो आपके पास बुक्स की लाइब्रेरी घर में होनी चाहिए और आप रोज
बिल्कुल.
एक बुक पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ बच्चे देख के, बिकॉज बच्चे सुन के नहीं सीखते हैं, हम देख के सीखते हैं। ह्यूमन माइंड जो है देख के सीखता है,
बिल्कुल
सुन के नहीं सीखता है।
बिल्कुल.
मैं एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन करता हूँ, आप मुझे सुन रही हैं
जी
और आप तो पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं,
जी
मुझे लगता है आप तो सुन ही रहे होंगे, मुझे लगता नहीं है, मुझे पक्का पता आप नहीं सुन रही हैं, आप देख रही हैं। एक
ओके.
छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन करते हैं, आप अपने राइट हैंड फिंगर, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर लाइए यहाँ पे, या बिल्कुल नजदीक के लिए, डोंट टच, जब तक मैं नहीं बोलूँ टच नहीं करेंगे, इमीडिएटली टच योर चिन, वेयर इज चिन, चिन इज हियर,
ओह,
सो आप देख रही हैं, हम देख कर सीखते हैं बजाय सुन के। तो
एग्जैक्टली सर.
बच्चों को भाषण ये लेक्चर मत दीजिए, उन्हें ये रोज प्रवचन मत दीजिए, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, एक टाइम के बाद तो वो सुनना
ये
ही बंद कर
बहुत ही
देंगे।
बड़ा एग्जाम्पल था व्यूअर्स, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल. हमें लग रहा है कि हम सुन भी रहे हैं लेकिन हमने वही किया
नहीं,
जो.
ह्यूमन माइंड देख के सीखता है, देख के रिस्पॉन्ड करता है, तो हमें वो खुद बनना होता है जैसा हम बच्चों को चाहते हैं, जैसा हम बनाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ भाषण से। भाषण से कुछ नहीं हो सकता, वो आप लेक्चर रोज दीजिए। मैं एक बार अहमदाबाद में था, मेरी एक वर्कशॉप थी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो मैंने ना ऐसे ही कुछ वो शायद ऐसे ही कुछ एग्जांपल दिया था या स्टोरी थी मेरे पास, एंड द सेशन वाज ओवर, एक दो बच्चे मेरे पास आए स्टेज के पास, मैं भी नीचे था, एंड एक बच्चा शायद 10-12 साल का होगा, एक 6-7 साल का उस वक्त था
जी.
दोनों। उसने बताया, मेरे को विश किया पहले, एंड उसने बोला थैंक यू सर, मैंने कहा मेरे को अच्छा लगा, बच्चे को कुछ अच्छी लगी होगी चीज़, तो शायद वो बोलने आया, कहता ये मेरा भाई है सर, सर आपने जो बात बोली मतलब मैंने आपकी हर बात सुनी, कहते हमारे घर में भी सर एक रिकॉर्डिंग चलती है और वो रोज एक कैसेट प्ले होती है एक ही तरह
ओह,
की, और जब वो कैसेट प्ले जब शुरू होती है तो मैं अपने भाई को बोल देता हूँ सो जा, अब ये
इनका तो
चालू
अब
हो गए,
चले गए.
चालू हो गए। सो वो 10-12 साल का बच्चा भी समझ रहा है और हम पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ हमारी कमी।
एग्जैक्टली. मैं भी यहाँ कहना चाहूंगी कि बच्चों को लगता है कि इनका तो भाई रोज का सेम डायलॉग है, सेम चीजें रिपीट कर रहे हैं. अगर आप चाहते हो कि वो चीजें बच्चे आपके लाइफ में करें, तो आपको पहले खुद करना होगा.
आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा भाई, लेकिन अब देखो ऐसा है कि मुझे मुझे लगता है मेरी बच्चे को आईटी में अच्छा होना चाहिए, तो मैं अगर आईटी में अच्छा नहीं हो सकता हूँ, मैं मेरे को प्रेजेंटेशन भी नहीं बनानी आती, पीपीटी नहीं बना सकता मैं, तो मुझे ऐसा नहीं, मैं हर चीज में मास्टर हूँ अपने बच्चे के, ऐसा भी तो नहीं है, हम अक्षय कुमार नहीं है ना, हर फिल्म में वो कुछ ना कुछ बन जाएंगे,
जी
ऐसा ऐसा लाइफ में होता नहीं है। बट आप किसी एक चीज में तो होते हैं ना, और
जी
जिस चीज में आप अपने बच्चे को अच्छा लेके करना चाहते हैं, तो उस तरह के रोल मॉडल दिखाइए,
बिल्कुल सर
ठीक है, तो आप उस तरह के लोग ढूंढिए और वो अच्छे होने चाहिए। स्कूल इसीलिए बने,
जी
स्कूलों की जो फॉर्मेशन है, लाइक स्कूल क्यों बने, स्कूलों की जरूरत या गुरुकुल क्यों आए, पहले जैसा मैंने बताया, पहले राजा का बेटा राजा ही बनता था,
जी
तो राजा के बेटे को राजा बनना है तो वो अपने फादर से सीखेगा,
जी
वैद्य के बेटे को वैद्य ही बनना होता था और वो अपने फादर के पास जाता था सीखने के लिए, नाई या हजाम के बेटे को नाई या हजाम ही बनना है तो वो किससे सीखेगा, अपने फादर से सीखेगा।
जी
हर बच्चे को अपने फादर से स्किल सेट लेना है, जाना है, सीखना है, तो उसके लिए रोल मॉडल उसके फादर है।
जी
लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो डॉक्टर के बेटे को म्यूजिशियन बनना है, म्यूजिशियन के बेटे को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर के बेटे को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये सब मिक्सअप हो गया।
जी
तो पेरेंट्स तो हर रोल में नहीं आ सकता ना, हर हर तरीके से वो नहीं कर
जी
सकता, इसीलिए शायद स्कूलों की फॉर्मेशन हुई
जी
कि अब मैंने जो स्किल्स अपने बच्चों को देनी थी मैं दे चुका हूँ, लेकिन अब ये एक्सपर्ट्स की जरूरत है मुझे, तो वो एक्सपर्ट्स क्या थे, गुरुकुल थे
जी
या स्कूल थे, तो वहां पर हमने भेजना शुरू किया। इसीलिए आज भले मैंने कितनी भी पढ़ाई, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन एक टीचर जो है वो प्रोफेशनल टीचर, हमसे शायद क्वालिफाई भी कम हो, लेकिन उसके पास ऐसी स्किल्स हैं जो कि वो डिलीवर कर सकता है हमारे
और
बच्चों को
डिसिप्लिन वे में
डिसिप्लिन तरीके से और अच्छे सिस्टम के साथ।
जी
हम कभी रेगुलर नहीं हो सकते, डिसिप्लिन हमारा हो ही नहीं सकता
जी
एज अ पेरेंट, हम लोग बहुत नहीं होना भी नहीं चाहिए, आप अपने काम में डिसिप्लिन है ना,
जी जी
तो हर जगह नहीं हो सकते, तो वो टीचर जो है वो क्लासरूम में या स्कूल में डिसिप्लिन है, हर चीज़ बढ़िया परफेक्ट कर रही है, बट वो एज अ मदर शायद नहीं कर रही होगी ना, तो
जी
हर इंसान हर जगह परफेक्ट नहीं होता,
बिल्कुल
कुछ लोग घर में अच्छे हैं, कुछ बिजनेस में अच्छे हैं, कुछ अलग अलग वो है, तो इसीलिए हमें स्कूल्स की जरूरत है, तो हमें अच्छे ट्रेनर चाहिए, अच्छे कोच चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए, हर चीज़ में हम मास्टर नहीं हो
जी
सकते, तो हम अपने बच्चों को रोल मॉडल भी वही दिखाएं जैसा उन्हें बनाना चाहते।
जैसे कि आपने कहा कि दो बच्चों ने आके कहा कि कैसेट अब प्ले हो गया,
जी
तो कहीं ना कहीं बच्चे भी ये फील करते हैं, लाइक आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बोल रहे हो, आप बैठ के टीवी या फोन देख रहे हो, तो बच्चे को लगेगा कि खुद तो टीवी देख रहे हैं, हमें पढ़ने के लिए कह रहे
एग्जैक्टली, तो
हैं।
आपके पास इसीलिए आप हमेशा भाषण से काम नहीं होता है,
बिल्कुल,
आपको रोल मॉडल होना पड़ता है,
जैसे
ऐसा
कि
देखा
मेरी
ना,
डॉटर है 2.5 साल की, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो साथ में वो भी एक्सरसाइज करेगी।
तो वो उसी को एंजॉय करेगी ना।
जी मैं कुकिंग करती हूँ तो वो भी साथ में कहती है कि मुझे भी रोटी बनाना है। मैं किसी को नमस्ते करती हूँ तो वो भी पीछे से हाथ जोड़ के नमस्ते करती है।
यही यही वो सीख रहे हैं बच्चे, यही सीख रहे हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं बच्चे। और एक टाइम होता है, देखिए आपका बच्चा आपका है सिर्फ 13 साल तक, याद रखना 13-14 साल तक वो आपका है, आपके बाद वो इस एज एज के बाद वो आपका नहीं रहता,
बिल्कुल बिल्कुल
बिकॉज इस एज में वो आपको रोल मॉडल मानता है, इस एज में वो आपकी सुनता है, इस उसके पास कुछ रीजनिंग नहीं होती है, उसने दुनिया नहीं देखी होती है, तो 3 या 4 साल का 5 साल का बच्चा जो है उसके लिए सबसे दुनिया में सबसे खूबसूरत लेडी कौन है,
उसकी
मदर,
मदर
क्योंकि उसने माँ के अलावा बहुत सारी दुनिया देखी नहीं, सबसे पावरफुल या स्ट्रांग आदमी
वेट
इंसान
करता।
कौन है इस दुनिया में, फादर, क्योंकि उसे लगता है फादर मेरा बहुत स्ट्रांग है।
जी जी
लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू किए, कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज होता है यार मैम ज्यादा सुंदर, मेरे टीचर ज्यादा सुंदर, दैट्स वाई लड़कियां खास तौर पर घर आके अपनी मदर को आइडियाज देती हैं कि मेरी टीचर ऐसी दिखती है, मैं मम्मा आप क्यों नहीं ऐसे,
बिल्कुल,
या आप क्यों नहीं ऐसे करते,
थोड़ा आप भी रेडी होके रहो।
आप भी ऐसे अच्छे से रहें,
बिल्कुल
इस तरह के कपड़े पहने, तो यानी कि उस बच्चे का रोल मॉडल पहले मदर थी, आज टीचर हो गया, अब टीचर हो गया तब भी ठीक है, तब भी गड़बड़ नहीं थी, अब वो 12-13 साल तक उसके रोल मॉडल टीचर रहेंगे, अब वो 12-13 साल के बाद उसे समझ आता है नहीं टीचर नहीं, अब दुनिया कुछ और भी है, फिर वो फिल्मों से या बॉलीवुड या बाहर की दुनिया से वो सीखना शुरू कर, अच्छे रोल मॉडल भी ले सकता है, हो सकता है वो तेंदुलकर को अपना रोल मॉडल मान ले, तो क्रिकेट में प्रैक्टिस करे, तो अच्छी चीजों में भी जा सकता है खराब में भी, तो उसके रोल मॉडल जब फिर बदलते हैं 12-14 साल की उम्र के बाद, तो उस वो टीचर की भी वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसे लगता है टीचर भी ऐसे बोलते रहते हैं, तो हम हमेशा अपने रोल मॉडल को या जो हमसे अच्छा है, जिस जैसा हम बनना चाहते हैं उसी की सुनेंगे, तो पेरेंट्स को लगता है कि वो हमारी सुने तो हमें वैसा रोल मॉडल रहना होगा।
तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बोलना कम करना पड़ेगा और वो एक्टिविटीज को ज्यादा करना पड़ेगा।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली,
जी
और बैठ के बात करें, एक्सपर्ट्स की आप राय लें, टीचर से बात करें, हर चीज नहीं आप अपने बच्चे से करवा सकते खुद,
जी जी
बट क्योंकि वो अगर बच्चा 10 साल का है तो हमें ये पता है कि इसका शायद ये टीचर से इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है बजाय हमारे, तो हम टीचर की हेल्प लेते हैं ना, एक्सपर्ट्स की हेल्प ले,
जी जी किसकी वो बात ज्यादा सुन रहे
किसकी
हैं।
वो बात सुन रहे हैं, उसके रोल
बिल्कुल
मॉडल क्या है, उसके आइडियोलॉजी क्या है, कैसा सोचता है वो, क्या बनना चाहता है, उसी तरह के हमें मॉडल सेट करने होते हैं।
जी। एंड सर आजकल डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसका क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के ब्रेन पे।
पॉजिटिव है कि हमें दुनिया भर की नॉलेज मिल रही है,
जी
हम अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि नॉलेज अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी जो आज से 20, 25, 40 साल पहले नहीं थी।
सिर्फ न्यूज़पेपर्स तक ही थी।
न्यूज़पेपर वो भी लिमिटेड था ना,
जी
अभी आज 24 घंटे न्यूज़पेपर भी सुबह आता था, तो अब 24 घंटे आपके पास है।
जी जी
नुकसान है जो डिजिटल का, वो ये है, हमारा फोकस, हमारी कंसंट्रेशन पुअर हुई है। लाइक बचपन में हमारे पास टीवी नहीं था, अगर था तो ब्लैक एंड व्हाइट, छोटा टीवी था, छोटी स्क्रीन थी, ब्लैक एंड व्हाइट था,
जी
और उसमें भी एक ही चैनल था, दूरदर्शन। 24 घंटे नहीं था चैनल हमारे पास, यानी चौबीस
जी
घंटे आप ऐसा नहीं टीवी ऑन करो और वो उसमें कुछ चल ही रहा हो, ऐसा नहीं था। उस वक्त हमारे पास बहुत सारा टाइम था, तो हम क्या करते थे, या तो खेलने बाहर खेलते थे या बुक्स पढ़ते थे, स्टोरीज पढ़ते थे। तो बचपन में आपने पूजा जी एक स्टोरी पढ़ी होगी, थर्स्टी क्रो,
जी
बचपन में आपने वो स्टोरी पढ़ी है,
जी
कभी देखी नहीं है, लेकिन आज भी आंखें बंद करके उस स्टोरी को अगर आप पूरा याद करो तो आपके दिमाग में एक वीडियो रखा हुआ है, वो वीडियो चलेगा, उसका पूरा एक वीडियो प्ले होगा, पूरा वीडियो चलेगा।
बिल्कुल
अब आपने तो वीडियो देखा नहीं, वो वीडियो आया कैसे? बिकॉज जब आप स्टोरी सुन रहे होते थे या पढ़ रहे होते
तो
थे, तो
माइंड में
आपके ब्रेन
क्रिएट
का एक ऐसा पार्ट जो उसको
क्रिएट
कैमरे की तरह रिकॉर्ड कर लेता था, विजुलाइज करके रिकॉर्ड करके यहाँ स्टोर कर लेता था, और आज भी वही स्टोरी एग्जैक्टली वैसे के वैसे रखी हुई है। अब आज क्या हो रहा है, आज स्क्रीन से डायरेक्ट वीडियो हमारे आंखों के माध्यम से दिमाग में जा रहा है, तो हमारे ब्रेन को कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ रही वीडियो बनाने के लिए, विजुलाइज करने के लिए।
जी
अब ब्रेन का वो पार्ट जिसे वो एक्सरसाइज करनी होती थी, अब वो क्या कर रहा है, खाली पड़ा हुआ है।
बिल्कुल
कोई भी ब्रेन का या बॉडी का कोई भी पार्ट अगर वो काम नहीं करेगा, कुछ दिन हम उससे काम नहीं लेंगे, तो धीरे धीरे वो डेड होना शुरू हो जाएगा,
बिल्कुल वो वर्क नहीं कर रहा
वर्क नहीं
अपना।
कर रहा, वो उसको आदत नहीं है काम करने की।
जी
तो हमारा विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन तो आज यूज ही नहीं हो रहा
बिल्कुल
बिकॉज ऑफ स्क्रीन्स। तो हम अपने ब्रेन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को ही हमने डंप कर दिया, यूज करना बंद कर
बल्कि
दिया।
ऐसा तो कभी किसी ने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने सोचा होगा कि आप डायरेक्ट उसको कैच कर रहे हो, तो बीच में जो ब्रेन का काम है वो बिल्कुल
तो
स्टॉप है।
ब्रेन का जो विजुलाइजेशन था, जो इमेजिन करने का था, वो तो रहा ही नहीं ना। तो
बिल्कुल
यही वजह है कि आज हमारी कंसंट्रेशन वीक है, हम विजुलाइज नहीं कर पाते,
जी
यही वजह है आज बच्चों का फोकस या डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। टीवी 13 साल तक के, 14 साल तक के बच्चे के पास टीवी नहीं होना चाहिए। एक मैंने रीजन बता दिया कि उसके ब्रेन का आपने फोकस करना कम कर दिया, आपने विजुलाइजेशन खत्म कर लिया।
जी
सेकंड, वीडियो में या स्क्रीन में कोई फिल्टर नहीं है, बच्चों को जो भी दिखेगा 12-13 साल की उम्र तक,
जी
वो उसे
जी
सच मान लेंगे। उनका कोई लाइक ऐसा फिल्टर नहीं होता कि वो जज नहीं कर सकते, उनकी कोई रीजनिंग नहीं होती कि ये सही है या गलत है, वो हर चीज जो देख रहे हैं टीवी में चाहे वो मोबाइल में, उसे सच मान सकते हैं। यही वजह थी शायद, अब मुझे पता नहीं, शक्तिमान पहले बंद हुआ तो बताते थे कि लोग, बच्चे शक्तिमान की
जी
उम्मीद में कूद गए कि वो बचाने आएगा।
जी जी ऐसे
मेरे
कहते
पास
सुने
कुछ
थे।
ऐसा एविडेंस नहीं है कि ऐसा हुआ, लेकिन बहुत सारे सुना हमने कि उन्हें लगने लग गया था शक्तिमान है। तो यानी कि वो सच मान रहे हैं हर चीज को जो टीवी में दिखाई जा रही है।
जी
अब वो कितने आप क्राइम आप देख रहे हैं, कितनी चीजें आप स्क्रीन में, मोबाइल में देख रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं, सारी सच नहीं होती हैं हमेशा, और सच हो भी उस बच्चे के लिए जरूरी नहीं है इस वक्त,
बिल्कुल
तो वो उसे सच मान लेगा। तो ये एक नुकसान है, भले ही हम टीवी के लिए बचपन से बताया गया हमें इससे आंखें खराब होती हैं, मुझे नहीं पता आंखें खराब होती होंगी, लेकिन अगर होती तो सबकी होनी चाहिए थी, और या फिर जो नहीं देख रहे उनकी तो बिल्कुल दुरुस्त रहनी चाहिए थी, ये भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का फोकस, कॉन्सेंट्रेशन वीक हो रहा है, और वो जो भी देख रहे हैं उसे सच मान रहे हैं। अब वो क्या देख रहे हैं, बिकॉज फिल्टर नहीं, आप घर पे नहीं है, टीवी आप एक रिमोट से ऑन होना है, आप किसी चैनल को लॉक नहीं कर सकते।
बिल्कुल
आप लॉक कर भी दोगे, बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, वो ज्यादा जानते हैं, तो एज के लिए फिल्टर नहीं है।
जी
तो दैट्स वाई 13 साल तक के बच्चे के पास ऐसी स्क्रीन से आपको हमेशा बचा के रखना है, जो कि उनके लिए अभी वर्थ नहीं है।
बिल्कुल सर। तो सर अब पेप माइंड पे आते हैं थोड़ा, तो पेप माइंड कैसे काम करता है बच्चों के ब्रेन पे।
हम लोग बच्चों को कैसे, देखिए कैसे सिखाते हैं, हाउ माइंड वर्क्स एक्चुअली, वी हैव टू फोकस ऑन दिस फर्स्ट, कैसे दिमाग काम कर रहे हैं। अगर हम मूवी की बात करें, कोई भी मूवी जो बनती है वो 1200 से 1400 पेज की स्क्रिप्ट होती है, और हम 3 घंटे में वो मूवी देखते हैं और हमें याद हो जाती है।
जी।
कोई भी बच्चा मूवी देखेगा वो उसे याद हो जाएगी। क्या आज तक ऐसा हुआ किसी बच्चे ने आके बोला हो कि मम्मा मुझे ये मूवी याद नहीं हुई, ये दोबारा देखनी है? किसी बच्चे ने टीचर को जाके बोला हो कि मैम मुझे इसकी कोचिंग या ट्यूशन लेनी है, मुझे मूवी याद नहीं हुई? वो 1200-1400 पेज की स्क्रिप्ट उसे 3 घंटे में एक बार में याद हो गई, लेकिन उसे पूरा साल 1200-1400 पेज पढ़ने हैं। पूरे साल की पढ़ाई में इतने पेज हैं, अगर 6th 7th 8th का बच्चा, तो इतने पेजेस उसे पढ़ने के लिए एक साल क्यों चाहिए? तो कैसे वो मूवी याद हो रही है? एक्चुअली मूवीज काम कैसे करती हैं, हमारे फिल्म डायरेक्टर बहुत स्मार्ट हैं। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में शायद दिक्कत है कि हम आज तक नहीं हो पाए। ये जो भी मूवीज हम देख के एक बार सीख रहे हैं, ये VAK में सीखते हैं। VAK, वी स्टैंड फॉर विजुअल पिक्चराइजेशन वीडियोग्राफी, ए फॉर ऑडिटरी साउंड डायलॉग म्यूजिक, और काइनेस्थेटिक में इमोशंस एंड फीलिंग। तो हम मूवीज को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं डायलॉग्स म्यूजिक को, और फील भी कर रहे हैं।
जी
तो तीनों पैटर्न हमारे दिमाग में जा रहे हैं और हमारी लर्निंग 100% हो रही है।
जी
लेकिन बुक रीड करते वक्त सिर्फ हम रीड कर रहे हैं, टीचर अगर बोल रही है तो सिर्फ हम सुन रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से स्कूल की स्टडीज बच्चे इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, टीवी से जल्दी सीख रहे हैं। आप पेप माइंड, हम बच्चों को कुछ ऐसी स्किल सिखाते हैं जो उनको लाइफ में काम आने वाली,
जी
लर्निंग उनकी इजी करते हैं, पढ़ाई उनको आसान कर देते हैं उनकी, और कंसंट्रेशन पे काम करते हैं कि फोकस बढ़े उनका। स्क्रीन बंद करवा देते हैं, और स्क्रीन बंद करवाने के लिए हम बोलते नहीं है कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, बट बच्चे छोड़ जाते हैं। उसकी बजाय हम कुछ अच्छी एक्टिविटीज उनको सिखा
ओके
करवाते हैं जिससे स्क्रीन टाइम अपने आप ही धीरे धीरे कम होते हुए बंद हो जाते हैं। एंड लेटरल थिंकिंग पे काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग पे काम करते हैं, और जो भी स्किल्स हम बचपन में नहीं सीखे और आज सीख रहे हैं शायद, और आज हम देख रहे हैं एज अ पेरेंट एज अ प्रोफेशनल की लाइफ में ये चीज़ें काम आने वाली, तो इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो है, जो मुझे लगता है होनी चाहिए, हर पेरेंट्स को इस पे फोकस करना चाहिए, एक टाइम था जब भक्ति राज था, जो लोग भक्ति करते थे वो राज करते थे,
जी
जो भी महात्मा हुए उनको शक्तियां, अपार शक्तियां मिल जाती थी भक्ति करते थे जब।
जी
फिर राज आया बाहुराज, बाहुराज यानी ताकत, जिसके पास पावर होगी, ताकत होगी, वो राज करेगा। महाभारत से लेकर आज तक का समय यही था।
जी
अब वो ताकत शरीर की है, ताकत पैसे की है, ताकत किसी भी तरह की, पॉलिटिकल पावर किसी भी तरह की है, जिसके पास वो ताकत है, पावर है, वो राज करेगा।
जी
अब ये भक्ति राज और बाहुराज जा चुका है, अब है वाणी राज, जिसे बोलना आता है वो राज करेंगे।
जी।
आज से वो टाइम शुरू हो चुका है जिसे बोलना आता है, जिसे कन्विंस करना आता है, जिसे
जो चीजों को प्रेजेंट कर
अप्रोच कर
सके।
प्रेजेंट करना आता है। तो आज वो राज, जो अपने बच्चों को, भले आपका बच्चा कितना ब्रिलियंट है, कितना अच्छा वो पढ़ाई में हो, गेम्स में हो, बट उसे कन्विंसिंग आनी चाहिए, उसे अप्रोच करना आना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए, हैंडल करना आना चाहिए। आप देखो ये जितने भी बड़े लोग होते हैं, मैं जब बहुत पहले जब मैं टीचिंग करता था, तो मैं, मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते थे जो हॉस्टल्स में पढ़ते थे। मैं छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, सिरसा से, तो मैं देखता था वहाँ पर विद्या देवी जिंदल स्कूल के हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे जो अपने होम टाउन आते थे वो ट्यूशन लेते थे। और एक स्कूल था अम्बाला में, चमन वाटिका, मेयो कॉलेज अजमेर, इस तरह के बच्चों को पढ़ाया करता था मैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल होता था, यार ये पेरेंट्स बच्चों को इतनी दूर हॉस्टल में क्यों भेज देते हैं? इनकी पढ़ाई और हमारी पढ़ाई में तो फर्क नहीं है कोई भी, वही CBSE ये पढ़ते हैं, वही हम पढ़ते हैं। तो हमेशा ये रहता था। तो मेरे को आज तक ना उसका जवाब, एक ऐसा जवाब जो मुझे दिल को लगे कि यस, वो मिल नहीं पाया। एंड इन 2012 आई वॉज टेकिंग अ सेशन फॉर टीचर्स, एंड उसमें बहुत सारे, एक कॉन्फ्रेंस थी एक्चुअली, वो बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स के टीचर आए हुए थे। एंड देर वॉज अ टीचर फ्रॉम मेयो कॉलेज अजमेर, एक्चुअली स्कूल है। तो उन्होंने, मैंने उनसे पूछा, एक ब्रेक था शायद, हम लंच कर रहे थे, मैंने कहा तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम हॉस्टल में पढ़ाते हो, आम बच्चा अपने शहर में नहीं पढ़ रहा, और पढ़ाई तो वही है, और ऐसा भी कुछ मैंने देखा नहीं कि तुम्हारे यहाँ कुछ बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ के आ रहा हो बच्चा, साइंस पढ़ के आ रहा हो। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा जवाब दिया, कहते विनोद सर बात ये नहीं है कि ये बच्चे सिर्फ पढ़ने, हमारे पास जो स्कूल्स में पढ़ाई है वो सिर्फ 25% है, 75% हम लीडरशिप पे काम करते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहते हमारे पास वो पढ़ने ही राजा महाराजाओं के बच्चे आते हैं, बिकॉज दे आर सो एक्सपेंसिव। मैंने कहा तो अब राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा जैसा आपने बताया। मैंने कहा बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगाओ कि अगर कोई संजय दत्त है, सलमान खान है, ये सलमान खान की शादी नहीं, अक्षय कुमार है, कोई भी है, इनका बच्चा क्या आपको लगता है ये इंजीनियर बनेगा या दिल्ली में नौकरी करने आएगा या डॉक्टर बनेगा? मैंने
नो
कहा नहीं। तो कह रहे ये तो ऑलरेडी राजा है, या बहुत बड़े बिजनेसमैन का बच्चा है, वो तो ऑलरेडी उसके पास वो लाखों हजारों लाखों एम्प्लॉयज होंगे। तो ये तो इन्होंने तो सीखना है हाउ टू कंट्रोल।
जी
तो ये तो लीडरशिप सिखाई जाती है, इनको लीडर बनाना है हमने। तो उस दिन मुझे समझ आया शायद हम लोग लड़ाई लड़ते हैं अपने बच्चों को नौकरी तक पहुंचाने के लिए,
जी
कि वो नौकरी कर लेंगे, अच्छे एम्प्लॉय बन जाएंगे, इसलिए पढ़ाते हैं। और ये लोग पढ़ाते हैं कि आपको राज कैसे करना है।
जैसे
दिस इज
आपने
द
कहा सर
डिफरेंस।
कि हम लोग इसलिए बच्चों को पढ़ाते हैं, और आज भी बहुत सारे पेरेंट्स का ये माइंडसेट है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है ताकि वो अच्छी जॉब पा सके, नौकरी कर सके।
जी
तो हमने बच्चों को इस हिसाब से क्यों नहीं प्रिपेयर करते हैं कि वो अपना कुछ अच्छा स्टार्टअप कर सके।
हाँ, तो अभी बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में ये हो गया है, शायद छोटे शहरों में भी। अब ये सोशल मीडिया ने एक काम किया है, अवेयरनेस तो ला दिया है। अब हर पेरेंट्स देख रहा है कि आप देखो ना, कोविड के बाद तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देखा मैंने, एक बच्चा है रियान काजी, US में, वो 9 साल का था इन 2020, और उसकी 2020 जब कोविड था, पूरी दुनिया बंद थी, बिजनेस बंद थे,
जी
और उस साल भी उसकी इनकम जो थी 217 करोड़ थी। ही इज जस्ट अ यूट्यूबर, वो कुछ टॉयज एंड गेम्स का रिव्यू करता है,
जी
एंड पूरी दुनिया के बच्चे उसे देख रहे हैं। तो वो
मिलियंस मिलियंस में व्यूज जा रहे होंगे।
यस, तो इस तरह बहुत सारी चीजें हुई हैं।
जी
कुछ बच्चों ने ऐसे स्टार्ट किया छोटी छोटी चीजें, लाइक क्रिएटिव, लाइक क्राफ्टिंग, या कुछ क्राफ्ट करना शुरू किया, लोग फेमस हो गए, सोशल मीडिया से लोगों ने सीखा, एंड बहुत लोगों ने बिजनेस चेंज किए या स्टार्ट किए, मैं
जी
बोलता हूँ। तो आज अभी ऐसा टाइम आ गया है, बिकॉज स्टार्टअप के नाम पे मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा शायद स्टार्टअप मुझे लगता है आ रहे होंगे, और टैलेंट की भी कमी नहीं।
जी तो सर फिर
तो
से मैं एक बार पेप माइंड पे आती हूँ। तो ये बच्चों पे के ब्रेन पे कैसे वर्क करती है, कैसे बच्चे इतनी जल्दी सीख
कैसे
जाते
हमें
हैं?
मूवी याद हो जाती है एक बार में, 1200-1400 पेज की स्क्रिप्ट और 2 पेज का पैराग्राफ याद नहीं होता? देखिए
राइट
किस तरह मूवी कैसे बनती है, हमें वही समझना है। स्क्रीन क्यों पसंद है बच्चों को, पढ़ना क्यों नहीं पसंद? बिकॉज स्क्रीन में तीन चीजें हैं, VAK, विजुअल इमेजेस, पिक्चर वीडियोग्राफी, ए ऑडियो डायलॉग सॉन्ग म्यूजिक, के काइनेस्थेटिक मीन्स इमोशंस एंड फीलिंग। मूवी जो है तीनों तरीके से चलती है, तीनों,
जी
उसमें इमोशंस हैं, फीलिंग हैं, डायलॉग सॉन्ग्स म्यूजिक सब कुछ है, पिक्चराइजेशन बढ़िया, सिनेमाग्राफी बढ़िया है। बुक्स में ऐसा नहीं है। तो हम बच्चों को विजुलाइज करना सिखाते हैं, स्क्रीन नहीं दिखाते हैं, विजुलाइज करना सिखाते हैं, इमेजिन करना सिखाते हैं। ऑडिटरी वो सुन तो हमें रही होते हैं, एंड काइनेस्थेटिक उनको हम कनेक्ट कर लेते हैं, रैपो में ले लेते हैं,
जी
उनको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करना जरूरी,
कनेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट
बहुत,
भी होता होगा सर।
शायद ये अगर आपने कनेक्ट कर लिया फिर बहुत इजी हो गया उसके बाद
जी
तो। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को कनेक्ट नहीं कर पाए अपने साथ, जो टीचर अपने स्टूडेंट को कनेक्ट नहीं कर पाया, तो आप कुछ भी बोलते रहिए उस पर कोई असर नहीं होने वाला है।
जी
तो वो जब कनेक्शन बन जाता है ना, तो फिर वो आपकी बात सुनते हैं, आपको समझते हैं, आप जो बोलोगे वो करेंगे।
जी
ये एक डिफरेंस है, अप्रोच डिफरेंट है। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं, तराटक मैंने जैसे बताया फोकस के लिए, मैंने बताया हैरी लॉरेन की कुछ मेमोरी टेक्निक्स हैं, NLP मैं यूज़ करता हूँ, रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्राइंडर
एनएलपी
USA
के
से।
बारे में कुछ बताइए सर। ये
NLP
जहाँ तक मैं जानती हूँ ये अमेरिकन टेक्निक है।
अमेरिकन टेक्निक है ये, NLP ये एक साइकोलॉजी का एक एडवांस वर्जन समझ लीजिए। तो रिचर्ड बैंडलर जो थे साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे, एंड जॉन ग्राइंडर इंग्लिश के प्रोफेसर थे इन सेम यूनिवर्सिटी, दे स्टार्टेड टुगेदर, तो जिसका नाम NLP दिया। NLP इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो स्टैंड फॉर ब्रेन, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, हमारे दिमाग की एक लैंग्वेज है जिससे हम समझते हैं, चीज़ों को परसीव करते हैं, मैनुपलेट करते हैं। तो ये एक ऐसा टूल है जो हम NLP एक्चुअली बच्चों को नहीं सिखा रहे, बट वी आर यूजिंग NLP एज ए टूल इन आर डिलीवरी। हम
जी
बच्चों को सिखाने के लिए NLP यूज कर रहे, तो सिखाने के लिए जब हम NLP यूज करते हैं तो हम ज्यादा अप्रोच अच्छे से कर पाते हैं, ज्यादा डिलीवर कर पाते हैं।
आपने स्टार्ट अपनी डॉटर से करा है सर, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, एंड वो आज के टाइम में गूगल गर्ल के नाम से जानी जाती है। आप उसके बारे में कुछ बताएं सर।
एक्चुअली मैंने जिया को ट्रेन किया था एज अ फादर ओनली. दैट टाइम आई वॉज नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेनर एंड शी वॉज ओनली 4 1/2, साढ़े 4 साल की थी. तो उस पर ना अच्छे रिजल्ट जब मिले तो मुझे लगा कि ये सब छोटे बच्चों पे काम होना चाहिए.
जी
और शायद प्रेशर बहुत है बच्चों के पास, स्कूल में बहुत प्रेशर है, इन्हें ये स्किल सिखाई जानी चाहिए. हम लोग प्रेशर से निकल के आए हुए तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं.
जी
हमारे पास बहुत प्रेशर था, रिसोर्सेज कम थे, प्रेशर
प्रेशर
ज़्यादा
ज्यादा
था.
था, राइट
एंड वो चीज़ें फिर मुझे लगा बच्चों को सिखाई जानी चाहिए. जिया ने शी गोट दिस टाइटल गूगल गर्ल ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 8 ईयर्स ओनली फ्रॉम मैनी न्यूज़ चैनल्स एंड चीफ मिनिस्टर हरियाणा, गवर्नर ऑफ हरियाणा, गवर्नर ऑफ पंजाब, बहुत सारे उसने अवार्ड लिए. एंड शी मेड अ रिकॉर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसे 9 साल की उम्र में पूरा भारत का संविधान याद था. एंड उसके बाद तो फिर लाइफ में जिया और जिया जैसे हजारों बच्चों को हमने ट्रेंड किया. हजारों बच्चे जिया से बेहतर भी कर रहे हैं, बहुत बेहतर भी हैं. ऐसा नहीं है कि हाँ जिया बिल्कुल, क्योंकि इनिशियली हमने स्टार्ट किया था तो आज भी बच्चे बहुत सारे, हजारों बच्चे
कैसा
से
लगता
गिर.
है सर जब आपके जो स्टूडेंट्स है या आपकी डॉटर है उन लोगों का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में भी आता है और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी इनवाइट किया जाता है जहां वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विनर रह रहे हैं, तो कैसा लगता है उस टाइम में?
देखिए एज अ टीचर मुझे, हर टीचर को अच्छा लगेगा भाई, ये तो सेंस ऑफ अचीवमेंट है. आप कौन, जब आपके स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप ही का प्रोडक्ट है वो, आपको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
जी
वो ग्रो करते हैं, कुछ भी अचीव करते हैं. तो मुझे लगता है पेरेंट्स के बाद दुनिया में एक टीचर ही होता है जिसे खुशी होती है.
बहुत ज्यादा खुशी होती है उसमें, वो अपनी सक्सेस देखते हैं।
बिल्कुल, ये हमारी सक्सेस वही है कि वो बच्चा कुछ अचीव कर रहे हैं. एक्चुअल में
जी
ये वो FD है जो मैच्योर 5 साल या 10 साल में नहीं, वो शायद पहले भी हो सकती है और बाद में भी होती है, और वो लाइफ टाइम मैच्योरिटी होती रहती है उसकी.
बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर अभी आप प्रेशर की बात कर रहे थे कि हमारे टाइम में बहुत प्रेशर रहता था, सो आज के टाइम में भी नो डाउट प्रेशर है एजुकेशन में, तो बिना बच्चों को प्रेशराइज किए हुए क्या उन्हें अच्छा एजुकेशन दिया जा सकता है?
देखिए प्रेशर रहेगा रहेगा, प्रेशर को आपने झेलना कैसे है ये देखना है. एक चम्मच नमक तो जीवन में मिलेगा ही मिलेगा. वो प्रेशर आपका सिर्फ पेरेंट्स से, घर से है, या वो बाहर समाज से है, सोसाइटी से है, बट उसे झेलना कैसे है, उस प्रेशर से आपको पार कैसे जाना है,
जी
समझे. आप देखिए ना एक मूवी है दंगल, आमिर खान जिसमें महावीर प्रसाद बने हैं.
राइट
वो एक्चुअली वो मूवी दो लड़कियां, दो बहनें हैं, गीता फोगाट, और वो लड़कियां स्पोर्ट्स में बहुत आगे गई, उनके फादर ने उन्हें ट्रेंड किया.
जी जी
तो एक्चुअली वो मेरे को मूवी ना उन लड़कियों की नहीं लगती है, एक फादर की लगती है. उसमें हीरो फादर
जी
है,
बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि उसने सबसे ज्यादा प्रेशर तो उसने झेला ना, लड़कियों ने फिजिकल प्रेशर झेला कि
उसने ये नहीं कहा कि तुम लोग
उनके
सुबह उठ के
पीछे,
भागो, वो
हाँ
साथ में भाग रहे हैं।
वो साथ भाग रहे हैं, उनके पीछे खड़े हैं स्पोर्ट में, उन लड़कियों के पीछे उनका फादर था. उनके फादर के इस डिसीजन में कि लड़कियों को कुश्ती करवानी है, उसके पीछे कोई नहीं था.
जी
तो वो प्रेशर जो था एक्चुअल में महावीर
पूरे
प्रसाद,
फादर पे था।
मैं मानता हूँ उनके ऊपर था.
जी
समाज में जहाँ हरियाणा में लड़कियों को घर से मतलब
बहुत
मुश्किल था
बहुत
निकलना, और
ज्यादा
उन्होंने उस तरीके से ट्रेंड किया, तो ये फादर की जर्नी थी. फादर कम ट्रेंड टीचर, वो भी टीचर भी वही थे.
बिल्कुल
तो मेरा मानना है कि दुनिया में किसी भी बच्चे के लिए कोई अच्छा, अगर पेरेंट्स के बात सोचता है, हर कोई सोचता ही है, बट टीचर का एक अहम रोल रहता है, वो भी उतना ही सोच रहा होता है.
बिल्कुल
तो
सर।
बच्चे अचीव करते हैं तो हमें भी उतनी खुशी होती है.
सर आपके पास तो फॉरेन के भी बच्चे हैं, फॉरेन के भी क्लाइंट्स हैं, तो ये आपसे कैसे जुड़े एंड क्या आपने ऐसा कमाल कर दिया कि फॉरेन के लोग आके आपसे
नहीं
जुड़ रहे हैं?
मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये कमाल पहले से ही था.
ओके
स्वामी विवेकानंद करते थे भाई, उनको नहीं बुलाया गया अमेरिका.
ओके
शकुंतला देवी कितना वर्ल्ड घूमी, पूरा दुनिया घूमी है वो,
जी
तो ये कमाल ऐसा कुछ नहीं है. हाँ मेरे पास 2014 में US से कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उसके बाद लगातार आते रहे हैं. मैं क्योंकि तब हम ऑनलाइन नहीं ट्रेंड करते थे, ऑनलाइन का ज़माना ही नहीं था.
जी
ये तो 2020 में कोविड के बाद हम ऑनलाइन गए, तो उसके बाद हमारे लिए स्कोप बड़ा हो गया, खुल गया रास्ते, रास्ते खुल गए. तो हम अब कई और कंट्रीज़ के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं. एंड एक मुझे याद है, एक स्टूडेंट है हमारी जिसने, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल, उनका एक
ओके
वर्ल्ड रिकॉर्ड था, गिनीज रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड. स्टूडेंट हमारी स्टूडेंट है US में, उसने ब्रेक किया 10 साल की
ओके
उम्र में. एंड वो अनब्रेकेबल रिकॉर्ड था, बहुत मुश्किल रिकॉर्ड था।
बहुत प्राउड
तो
मोमेंट होगा
वो
सर।
रिकॉर्ड जो उसने ब्रेक किया, और 4 साल पहले जो ब्रेक किया, आज तक उसका रिकॉर्ड कोई और ब्रेक नहीं कर पाए। तो हमारे पास क्या है, हम रेफरेंस से लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से बात जाती है।
जी
अगर कुछ अचीव कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो सराउंडिंग में सब लोगों को पता लगता ही है। तो धीरे धीरे हम US पहुंच गए, कनाडा, रशिया, जर्मनी, वियतनाम, बहामास में हम लोग, दुबई में ट्रेनिंग दे रहे हैं।
ओके, बहुत बिग अचीवमेंट है सर।
नहीं, ये अचीवमेंट, बस रिजल्ट्स आ जाएं और बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे लिए तो सारे अपने ही हैं, पूरी दुनिया
बिल्कुल
एक ही है।
बिल्कुल सर। एंड सर, वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप पेरेंट्स को एंड बच्चों को कुछ गाइडेंस दें।
पेरेंट्स के लिए की बात है जी, ये बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं, ये हमारे थ्रू इस दुनिया में आए हैं। तो आपका पोजेशन नहीं है कि हम इन पर अपनी कोई भी बात थोप दें। ये हमारे थ्रू इस दुनिया में है, हमारे नहीं है, ये इसी सोसाइटी के हैं, ये हमारे थ्रू आए हैं और हमारे साथ कुछ जर्नी, कुछ रास्ता तय करेंगे, जर्नी तय करेंगे, फिर ये सोसाइटी के हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि ये मैंने नहीं कर पाया जीवन में तो मैं इससे करवा लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ड्यूटी एज अ पेरेंट, एज अ टीचर्स, ये है कि हम इन्हें अच्छी लाइफ दें, अच्छी स्किल्स दें, अच्छे संस्कार दें। एक एक गाड़ी की तरह समझिएगा, मैं इस एंड में एक बात कहता हूँ, आपके पास एक कार है, कार के अंदर एक इंजन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो इंजन होता है इंसान का दिमाग। अब वो इंजन जैसा भी है, वो हमें मिल गया, तो इंसान का दिमाग है जो जैसा है, वो उसे हम और रिफाइन कर सकते हैं। एंड उस जैसे एक इंसान के पास अच्छा दिमाग है, वो कार का इंजन मैं समझता हूँ उसे, और उसके बाद उसके 4 व्हील्स हैं, दीज आर स्किल्स। एक्चुअली स्किल जितनी शार्प होंगी, व्हील जितने राउंड होंगे, गाड़ी उतनी तेज दौड़ेगी। इसके बाद है फ्यूल, फ्यूल पेरेंट्स की ड्यूटी है। फ्यूल गाड़ी के अंदर फ्यूल रहता है, और बच्चों के अंदर मोटिवेशन या मीनिंग, क्यों उन्हें आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ना है, उनके लिए मोटिवेशन क्या होगा, वो फ्यूल जो है पेरेंट्स की ड्यूटी है, वो फ्यूल फिल करना पेरेंट्स की ड्यूटी है, वो मोटिवेशन देना बच्चों को पेरेंट्स की ड्यूटी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उस गाड़ी का स्टेयरिंग, आपकी गाड़ी कितनी भी पावरफुल हो, व्हील्स कितने भी अच्छे हो, गाड़ी का इंटीरियर कितना अच्छा हो, बॉडी कितनी स्ट्रांग हो, फ्यूल बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग डिसाइड करता है कि गाड़ी किधर जाएगी। तो जो वो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, वो संस्कार, मैं बोलता हूँ वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हमें देनी है ताकि वो बच्चे जीवन में आगे बढ़े।
तो व्यूअर्स, आज आपने बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारी वैल्यूएबल बातें बताई सर ने हमें। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए और अपने बच्चों का भविष्य बहुत बेहतर बनाइए, क्योंकि ये हमारे भारत का भविष्य है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।